السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
صرف دائیں طرف سے آواز آئی ہے، میری بائیں طرف کی بہنوں سے آواز نہیں آئی. میں دوبارہ آپ کو موقع دیتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کی جو ہے وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز کا سننا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمد للہ رب العالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے فائنڈنگ انر پیس اینڈ ہیپینیس، دلی سکون اور خوشیوں کی تلاش. پریشان ہوں میرے دل کی پریشانی نہیں جاتی، پریشان ہوں میرے دل کی پریشانی نہیں جاتی، بڑی مدت ہوئی اس گھر کی ویرانی نہیں جاتی. بڑی مدت ہوئی اس گھر کی ویرانی نہیں جاتی، تمام اشک ہے اور مسکرائے دیتی ہوں، تمام اشک ہے اور مسکرائے دیتی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا. ہوا خلاف چلی تو چراغ خوب جلا، ہوا خلاف چلی تو چراغ خوب جلا، خدا بھی ہونے کے کیا کیا ثبوت دیتا ہے، خدا بھی ہونے کے کیا کیا ثبوت دیتا ہے. اور میرا اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ اگر ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں اور اگر اپنے ہی دل میں جھانکتے ہیں تو بڑی اداسیاں ہیں، بڑی تنہائیاں ہیں، بڑی وحشتیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، بڑے دکھ ہے، بڑی تکلیفیں ہیں، بڑی بیماریاں ہیں، بڑے مسائل ہیں جو میں اور آپ محسوس کرتے ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ شاید میں سب سے زیادہ دکھی عورت ہوں. ایسا لگتا ہے کہ میرا جو امتحان ہے نا وہ سب سے بڑا ہے، میں بڑے سخت امتحان سے گزر رہی ہوں، میں بڑی سخت آزمائش میں ہوں، میرا دکھ بہت بڑا ہے، میری تکلیف اتنی سخت ہے، میرا درد اتنا شدید ہے کہ میرے بہت قریبی لوگوں کو بھی میرے دکھ کا، میرے درد کا، میری تکلیف کا، میری وحشتوں کا، میری تنہائیوں کا، میرے راتوں کو جاگنے کا، میرے آنسو بہانے کا، میری پریشانیوں کا میرے بہت قریب کے لوگوں کو بھی اندازہ نہیں. اور کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں بہت تنہا ہوں، اور کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا تو کوئی آنسو پہنچنے والا بھی نہیں ہے، مجھے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، میرے زخموں پہ تو کوئی مرہم رکھنے والا بھی نہیں ہے. کہنے کو دوست بہت ہیں، کہنے کو میرے بچے ہیں، اور کہنے کو دولت کی کمی نہیں ہے، اللہ نے بہت نوازا ہے، ماشاءاللہ میرے بہن بھائی ہیں، بہت ایجوکیٹڈ ہیں، بہت کچھ ہے میرے اور آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا. لیکن کیا بات ہے کہ میں اندر سے خالی ہوں، ایمٹی ہارٹ. کیا بات ہے کہ میرے دل کو سکون نہیں ہے. اتنی دولت جس کا میں انتظار کرتی رہی اور جس کے لیے دعائیں کرتی رہی، وہ ڈگری جس کے لیے رات اور دن میں نے ایک کر دیا، وہ یونیورسٹی جس کے لیے میں دعائیں کرتی تھی، میرا جی پی اے بیسٹ جی پی اے، میرا ایم کیٹ کا ریزلٹ واہ بھائی واہ، اتنا تو میرے ارد گرد جاننے والوں میں سے کسی نے بھی نہیں لیا، میرے بیٹے نے، وہ اس کا جی پی اے ہے. और फिर इसके बाद जो मेरी और आपकी ख्वाहिशात की जो है वो एक फहरिस्त है, मेरे और आपकी जो गोल्स हैं ज़िंदगी के वो इतने तवील हैं कि एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा। तो क्या मेरी और आपकी ख्वाहिशात, मेरी और आपकी तरजीहात, मेरे और आपके गोल, क्या मुझे और आपको वो खुशियाँ दे सके जिसका मुझे और आपको इंतज़ार है? क्या मुझे और आपको वो कल्बी सुकून और इत्मीनान, तमानियत कल्बी वो बख्श सके जिसकी मैं और आप मुंतज़िर हैं? तो याद रखिएगा, ये माना कि ज़िंदगी में गम बहुत हैं, ये माना कि ज़िंदगी में गम बहुत हैं, हंसे भी ज़िंदगी में हम बहुत हैं। हौसला गम का यूं बढ़ाया कर, हौसला गम का यूं बढ़ाया कर, आंख भीगे तो मुस्कुराया कर। और हम में से ये जो लड़कियां और औरतें हैं जो यहाँ मेरे सामने बैठी हैं, मेरी मुखातिब हैं, उनको ये फ़न बहुत खूब आता है। आंखों में आंसू होते हैं, काजल ख़राब होता है, ख़राब हो रहा होता है, लेकिन दूसरे को पता ना चल जाए, अम्मी को समझ ना आ जाए तो लिपस्टिक थोड़ी और डार्क लगाती हैं और फिर मुस्कुराने लगती हैं। उधर से रो रही होती हैं और उधर से मुस्कुरा रही होती हैं। तो काजल भीगता है साथ साथ, यानी मुस्कुराती भी हैं लेकिन रो रही होती हैं तो काजल भीगना शुरू हो जाता है ना। तो हकीकत क्या है कि दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है जिसको अपने आप से लड़ना आता है। दुनिया की हर जंग वही लड़ जाता है जिसको अपने आप से लड़ना आता है। क्यों कर उलझ रहे हैं कि मंजर है रात का, मेरा और आपका यही तो मसला है कि जवान बेटे की डेथ क्यों हो गई और फिर मौके पे ही हो गई, और 25.5 साल का नौजवान बेटा और सबसे बड़ा और सबसे पहली औलाद से जो एक मोहब्बत का ताल्लुक होता है और जो एक रिश्ता होता है, जो अपनाइयत होती है, जो लाड होते हैं, जो मोहब्बतें होती हैं, जो उसका इंतज़ार होता है, और पहले उसके लिए कितने उस फूल के गोद में खिलने के लिए कितने लोग दुआएं करते हैं, ननिहाल का भी लाडला, दुधियाल का भी लाडला, बहुत कुछ करते हैं ना सब कुछ। तो लेकिन ये कि अगर डेथ की खबर आ जाए तो उस वक्त फिर मैं और आप जो है वो क्या करते हैं, क्यों कर उलझ रहे हैं कि मंजर है रात का, सूरज न बन सके तो सितारा बनाइए, गर हो सके तो रोशनी खुशबू हवा बन जाइए, दुनिया बहुत बुरी है तो अच्छा बनाइए, है ना। अगर जोर हवाओं ने डाल रखा है, बड़े मसाइल हैं मेरे और आपके, क्योंकि ये जो आज का मेरा टॉपिक है ये मैंने बहुत सोच समझ के रखा है। 35-40 साल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से मैं जो है सबक सीखती हूँ, सिखाती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, और आप जैसे हंसते मुस्कुराते चेहरे ऐसे ही सामने बैठते हैं और चमकती पेशानियाँ हैं, मुस्कुराती आंखें हैं, और बहुत प्यारी प्यारी बहनें माशाल्लाह कुरान की मोहब्बत में, दीन की मोहब्बत में अल्लाह का पैगाम सुनने के लिए जमा होती हैं। जैसे कि आज भी आप लोग दूर दूर से आए हैं, कोई घंटे की ड्राइव करके, कोई 1.5 घंटे की ड्राइव करके, करीब से कोई भी नहीं आया, यानी क्योंकि कॉटेज के अंदर दर्स है ज़ाहिर है, तो कॉटेज तो थोड़ा शहरी इलाके से वैसे भी दूरी होती है, तो आप लोग यहाँ पे चले आए अल्लाह की मोहब्बत में, कुरान के पैगाम में। तो इस वक्त जो है फिर मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि मैं और आप कैसे सुकून तलाश करें और मेरी और आपकी ज़िंदगी में कैसे जो है वो खुशियाँ मिल सकती हैं। क्योंकि जब मैं और आप सुकून तलाश करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, कभी हम जो है सोचते हैं कि, यानी दुनिया में हम लोगों को देखते हैं कि सुकून की तलाश में लोगों ने क्या क्या किया। हम चंद एक मिसालें अपने सामने रखते हैं कि सबसे बड़ी खुशी जो है या सबसे बड़ी जो है वो सुकून जो है आम जिंदगी गुजारते वक्त हमें कैसे लगता है कि मुझे ज़्यादा ऐसे खुशी मिलेगी। तो आप में से कुछ लोग वॉलंटियर करें, यानी आम सोसाइटी में हम क्या सोचते हैं कि कैसे मुझे ज़्यादा खुशी होगी, यानी मुझे कैसे ज़्यादा खुशी होगी। मैं आपको अपनी, यानी जो जो छोटे होते हैं ना तो उस वक्त जो है मेरा और आपका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। जूं जूं आंख शऊर की खुलती जाती है, बढ़ती आप बड़े होते जाते हैं, तो इसी तरह मेरे और आपके गोल, मेरी और आपकी तरजीहात, मेरी और आपकी जो ख्वाहिशात हैं, विशेज हैं, वो चेंज होती चली जाती हैं या वो बढ़ती चली जाती हैं। तो आप में से कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे, जैसे बहुत छोटा सा बच्चा जो है जो ही वो आंख जब वो खोलता है तो उसके हाथ में हम खिलौना देना शुरू करते हैं, तो वो थोड़े दिन एक खिलौने से खेलता है, फिर जब आप उसको देते हैं तो उसको फेंक देता है हाथ मार के, फिर वो दूसरा खिलौना चाहता है, है ना। फिर उसके बाद जब वो थोड़ा सा और बड़ा होता है, आप उसके ऊपर भी आपने खिलौने लटकाए हुए हैं उसकी क्रिप के अंदर भी, तो वो खिलौनों को पहले वो सिर्फ देखता है तो खुश होता है, फिर उसमें से आवाज़ आनी शुरू जब होती है, आप उसके चाबी जब घुमाते हैं आवाज़ आती जाती है, तो बच्चा मुस्कुराने लगता है और खेलता है, और खेलता खेलता फिर वो सो जाता है। फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है, फिर वो उसको वो खिलौने जो पहले आप हाथ में देते थे छनकना टाइप, फिर वो जो उसके ऊपर वो चलता था, अब वो उसको खुशी नहीं देता, अब उसको और बड़ा चाहिए, अब उसकी डिमांड या उसकी ख्वाहिश जो है वो डिफरेंट है। फिर आप उसके लिए, आप भूखी रहती हैं, आप प्यासी रहती हैं, आप अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी करती हैं, लेकिन आप अपने बच्चों की विश जो है या ख्वाहिश जो है उसको पूरा करती चली जाती हैं। तो बच्चा एक, यानी आप कभी उसको ग्रॉसरी पे अपने साथ ले जाएं तो आप आगे होती हैं, बच्चा पीछे होता है, आप फिर पीछे मुड़ती हैं, फिर देखती हैं वो एक चीज़ को पकड़कर, एक को नहीं चार चीज़ों को पकड़कर ऐसे खड़ा हुआ होता है, तो आप कहती हैं कि आगे चलो, कहता है मामा, वो उस चीज़ की तरफ इशारा करता है, आप उसको उससे हटाती हैं, वो दूसरी चीज़ को ग्रैब कर लेता है। आप जूं जूं आगे चलती हैं, ट्रॉली आपकी आगे चलती है, तो उसके अंदर बच्चे ने कई चीज़ें फेंकी भी होती हैं क्योंकि उसको वो चीज़ें चाहिए होती हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि फिर बच्चा रोता धोता है क्योंकि हम कहते हैं अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, या इसकी प्राइस ज़्यादा है, या अभी सेल पर आएगा, या ये चीज़ आएगी तो मैं आपको लेकर दूंगी। तो आप बच्चे को कोई एक चीज़ ले भी देती हैं और कभी उसको आप बहलाती हैं और आप उसको वहाँ से बाहर निकाल लाती हैं, और सुबह से ले कर शाम तक भी आप बच्चों को बाहर जब खेलने का मौका देती हैं तो रेत का घरौंदा बनाता है, वो पत्थर से ईंटों से चीज़ों से वो बच्चे खेलते हैं और बड़ा खूबसूरत उन्होंने डॉल हाउस या कोई चीज़ जो भी उन्होंने बनाई है। जब आप शाम को कहते हैं कि बेटा आप घर चलते हैं तो बच्चा वहाँ पे जो है वो एड़ियाँ रगड़ कर रोने लगते हैं, वो कहते हैं कि नहीं अभी हमने नहीं जाना, अभी हमने खेलना है, लेकिन फिर वो अपने हाथों के, वो अपनी ख्वाहिशात को अपने हाथों से चिकना चूर करते हुए वो बच्चे वहाँ से फिर आप उनको घर लेकर आ जाती हैं। ऐसे ही होता है ना, जब घर आते हैं वो कहते हैं कि अभी हमारा प्ले टाइम है, फिर वो कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई मूवी, कोई प्ले स्टेशन, वो किसी चीज़ पर थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहता है, आप कहते हैं नहीं अभी आपका जो है वो अभी आपका स्लीपिंग टाइम हो गया, अब आपको सोना है। तो आप उसको सुलाती हैं, आप उसको उठाती हैं, आप सोचती हैं कि मैं जो है अभी कितनी मसरूफ़ हूँ, अभी अभी अब जैसे शादी हुई साथ ही प्रेग्नेंट हो गई, एक औरत बहुत इस बात पर नाराज़ थी मेरी दोस्तों में से, कहने लगी कि बिल्कुल इंजॉय ही नहीं किया, हनीमून जाते, घूमते फिरते, किसी कॉटेज, किसी और, किसी आयरलैंड जाते, बस फौरन ही प्रेग्नेंट होती, मैंने क्या ज़िंदगी को इंजॉय करना था, शादी को मैंने तो कोई इंजॉय नहीं किया क्योंकि फौरन मेरे जो है वो बच्चा पैदा हो गया। एक और मेरी दोस्त जो थी, जब उसकी शादी हुई तो उसके मियाँ भी, मतलब मियाँ डॉक्टर थे, उन्होंने प्लान किया हुआ था, मियाँ ने पहले से कह दिया कि ये तुम इंजेक्शन लगवा लो, ये तुम दवाई ले लो ताकि तुम प्रेग्नेंट ना हो सको, तो फिर जो है हम पहले अभी कुछ देर हम बच्चा नहीं पैदा होने देंगे। ये तो अलग बात है कि इंसान कितनी प्लानिंग कर ले, लेकिन जब अल्लाह चाहे तो कोई इसको रोक नहीं सकता। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने कुछ इंजॉय किया, फिर इसके बाद एक दिन मेरे पास वो रोती हुई आई, कहने लगी कि बहुत दिनों से हम ट्राई कर रहे हैं ना तो बच्चा पैदा नहीं हो रहा, मतलब मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हो रही, और मुझे लग रहा है कि मैंने अल्लाह को नाराज़ तो नहीं कर दिया। अभी चंद दिन पहले एक औरत ने कहा कि मतलब मेरी जो बेटी है वो हार्ट, वो आई स्पेशलिस्ट बन गई, मेरा बेटा भी डॉक्टर है, पता नहीं वो कौन सा स्पेशलिस्ट, और पता नहीं शादी के कितने साल, 5-7 साल तो बच्चे पैदा नहीं हमने होने दिए, ज़ाहिर है बच्चे पढ़ रहे थे स्पेशलाइजेशन और जो भी, और अब पिछले 4 साल से वो ट्राई कर रहे हैं और वो प्रेग्नेंट ही नहीं मेरी बहू हो रही, और मैंने जब 1-1.5 साल गुजरा वो नहीं प्रेग्नेंट हुई तो मैंने एक उम्र का मन्नत मानी, फिर वो प्रेग्नेंट नहीं हुई मैंने दूसरी उम्र की मन्नत मानी, मैं 2 उम्र करूँगी या नेकी के काम में डालूंगी, अब मैं तीसरी उम्र की मन्नत मानने वाली थी उस्ताजा क्या वो प्रेग्नेंट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ना, तो मैंने कहा अल्लाह ताला चाहते हैं कि इसी बहाने जो है ना अब तुम तीसरे उम्र की मन्नत मान लो, हंसी खेल मजाक होता रहा, तो माशाल्लाह अल्लाह ने उनको जो है वो पोता उसका हुआ है, नवासा हुआ है, यानी दोनों तरफ से मेरी उनसे, मेरी दोनों स्टूडेंट हैं, दोनों से दोस्ती है। तो यानी आप देखें जो प्रेग्नेंट हो गई वो भी रो रही है, वो बहुत परेशान है कि प्रेग्नेंट क्यों हो गई। जिसने अपनी मनमानी मर्जी से प्लानिंग की, जो अल्लाह ने उसकी प्लानिंग में उसको, अल्लाह ने उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया उसकी प्लानिंग को और अल्लाह ने उसको मौका दिया, वो दे जो प्रेग्नेंट फिर नहीं हो रही थी तो वो भी रो रही है ना। तो इसी तरह यानी बच्चों का खेलना, और जैसे आप में से कोई, जैसे जब जब आपने पढ़ाई की होगी और आज हम अपने बच्चों को भी देखते हैं, वो सब्जेक्ट कोई लेते हैं और वो बनना कुछ और चाहते हैं, और यहाँ पे बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज लगते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, ज़्यादा मौके हैं कि वो किस सब्जेक्ट को वो चूज़ कर लें, तो बच्चे चेंज करते रहते हैं। कभी वो लाइफ साइंसेज में जाते हैं तो कहते हैं हेल्थ साइंसेज में जाना है, और कभी वो कहते हैं कि डॉक्टर बनना है, कभी वो कहते हैं नहीं इंजीनियर बनना है, कभी वो कहते हैं नहीं नहीं आईटी की तरफ जाना चाहते हैं, और कभी बाज़ औक़ात हर बंदा जो है ना वो साइकोलॉजी पढ़ता चला जाता है। जैसे यहाँ पे सब साइकाट्रिस्ट की ही ज़्यादा ज़रूरत है, यानी हर बच्चा किसको किस में जा रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, किस में पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो यानी यहाँ पे सब पागल ही होंगे और सबके लिए बस अब हमें उसी की ज़रूरत है। हालांकि यानी मैं कभी ऐसे ही बात होती है तो बहुत से बच्चे किस में जी हम उसमें जा रहे हैं। खैर, तो अब सवाल ये है कि यानी हम कन्फ्यूज़ हैं या हमारे बच्चे कन्फ्यूज़ हैं, जिसमें हम टाइम और मनी दोनों चीज़ों को ज़ाया करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि हम इंडिया पाकिस्तान के लोग स्वाय डॉक्टर इंजीनियर के हम खुश नहीं होते, बच्चे अगर के डॉक्टर की तरफ चले जाएं या इंजीनियर की तरफ चले जाएं तो हमें लगता है कि मुझे इनर जो है वो पीस मिल रहा है, खुशी जैसे होती है अंदर से जैसे, तो हमारा हमारी बच्ची का मिजाज भी वो नहीं है, बेटे का मिजाज वो नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि बस तुम्हें डॉक्टर बनना है, कह दिया ना ये तुम्हारे अब्बू की ख्वाहिश है, ये मेरी ख्वाहिश है, तो हम उसको बाउंड करते हैं। हालांकि बच्चा किसी भी चीज़ में चला जाए जो उसका मतलब उसको अच्छा गाइड करें, अगर उसके अंदर है वो चीज़ कि वो बन सकता है तो, लेकिन ये कि लेकिन अगर वो किसी और चीज़ में भी चला जाए तो हमें उस पर जो है इम्पोज नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए, हमें उसको अपने दिल पर नहीं लगा लेना चाहिए कि मेरा बच्चा डॉक्टर क्यों नहीं बना, मेरा बेटा या बेटी इंजीनियरिंग में क्यों नहीं गई, या जो मैंने सोचा था मेरी प्लानिंग के मुताबिक उसने क्यों नहीं किया। पढ़ना चाहिए उनको, तो वो किसी भी चीज़ में चले जाएं तो उसको अपने दिल का मसला नहीं बना लेना चाहिए। मेरे पास जो बहुत से लोग आते हैं, बहुत से स्टूडेंट, बहुत से दोस्त से बहुत से पड़ोसी, तो इस तरह की सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों को सामने लेकर आते हैं कि ये मसला है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, ये मसला है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तो असल चीज़ ये है कि बच्चा जो है वो उनकी मर्ज़ी का जब वो शोभा इख्तियार नहीं करता तो वो परेशान होते हैं। अच्छा, बच्चे का क्या हुआ, बच्चे ने हेल्थ साइंसेज में अप्लाई किया था मैकमास्टर में, अच्छा उसको हेल्थ साइंसेज में मैकमास्टर में एडमिशन नहीं हुआ, अच्छा उसका हो गया वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में, चलो भाई हेल्थ साइंसेज में मैकमास्टर में नहीं हुआ है वेस्टर्न में तो हो गया, चलो आप वहाँ बच्चे को भेज दें, क्वींस यूनिवर्सिटी में किंगस्टन में अगर हो गया तो आप वहाँ भेज दें। यानी आपने अगर एक चीज़ चूज़ की है कि दूसरी जगह हो गया, नहीं यहाँ चाह था सब्जेक्ट भी यही चाहिए, यूनिवर्सिटी भी यही चाहिए, एडमिशन तो मैकमास्टर में मिल रहा है लेकिन सेम सब्जेक्ट में नहीं मिल रहा, फिर रोना धोना चल रहा है, बच्चों के आंसू बह रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, माँ बाप परेशान हाल हैं। अच्छा, जिनका टोरंटो यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ वो कह रहे हैं कि रैंकिंग में वो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड लेवल की ना, उसमें मेरी हमारी तो ख्वाहिश थी। अच्छा, जिस कुछ माएँ हैं जिनके बच्चे यूनिवर्सिटी में नहीं जाते, अमेरिका में ऐसा नहीं है, यहाँ पे कॉलेज मेंटली वो शुरू में बच्चों को कुछ को कॉलेज के लिए तैयार कर देते हैं, कुछ को यूनिवर्सिटी के लिए तैयार कर देते हैं, तो जो बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो रिश्ता लेने तक के लिए माएँ लड़के की माँ पूछती है कि बच्ची यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई है या कॉलेज की पढ़ी हुई है, आप तसव्वुर करें इस बात का, जो हम जब रिश्ता ढूंढने की तरफ लड़के की माँ जाती है तो पूछती है कि बच्ची ने कॉलेज से पढ़ा है, नहीं नहीं हमें कॉलेज का लड़की से रिश्ता नहीं करना, और दूसरी तरफ जो है अच्छा तो बच्ची का लोन कितना, अच्छा इतना लोन है, नहीं नहीं ये भी ठीक नहीं है, अच्छा तीसरा सवाल ये है कि अच्छा तो क्या बच्ची ने ड्राइविंग टेस्ट पास किया हुआ है, तो मैंने कहा अच्छा मुझे ये तो जहन में सवाल नहीं था, पूछा नहीं उसकी अम्मी से, और मैं तो वैसे मैंने कहा रिश्ता कराने वाली भी नहीं हूँ, मैं तो कुरान की टीचर हूँ, इतनी मसरूफ़ रहती हूँ, क्योंकि आपने ये बात की तो मेरे पास ऐसी बच्चियों वाली माएँ भी हैं तो मैं चाहती हूँ चलो किसी की मदद हो जाए, बड़ी नेक खातून है, उसकी बेटी बड़ी नेक है, मैं उसको जानती हूँ। तो उसने कहा अच्छा उसने ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक नहीं लिया, नहीं नहीं इतनी सुस्त बहू को मैं अपनी लड़की को बहू जो है वो नहीं बना सकती। अच्छा, अब आप देखें कि मैं और आप आइडियलिज्म के जो है वो आइडियलिज्म के जो है उसमें उसकी बीमारी में मुब्तला है ये कहना चाहिए। हम लड़की को देखते हैं तो जैसे एक सेल्फ मेड होम मेड एक चीज, जैसे जिसे खुद जिसकी प्रोडक्शन हो सकती हो, लड़के की जब तलाश में जाते हैं तो उसमें भी जो है मेरी और आपकी, जैसे एक लड़की है डॉक्टर है, उसके लिए कई रिश्ते आ रहे हैं मैं जानती हूँ, इसके बावजूद उसकी अम्मी अभी तक नहीं करी क्योंकि हाइट उस लड़की के मुताबिक अभी नहीं आ रही, कुछ और एक दो चीजें हैं जो लड़की की और उसकी अम्मी की ख्वाहिश है, तो इसलिए हालांकि डॉक्टर के ही रिश्ते आ रहे हैं तो उन्होंने वो रिश्ता अभी तक नहीं कोई भी उन्होंने कबूल किया। तो बाज़ लोग जो है वो कलर के कलर का मसला कर लेते हैं कि यानी रंगत ऐसी होनी चाहिए, बाज़ नस्ल को कर लेते हैं, बाज़ इंडिया पाकिस्तान के अंदर उलझे हुए हैं कि खुद यहाँ हैं, इमिग्रेशन ले ली है, 15-15 साल हो गए, इंडिया वाले इंडिया नहीं गए, बच्चे पाकिस्तानी पाकिस्तानी गए, हमने इंडिया के लोगों से नहीं करना, हमने हैदराबादी लोगों से नहीं करना, हमने पाकिस्तानी लोगों से नहीं करना। तो मेरे और आपके जो मसाइल और मुश्किलात हैं वो इस तरह की हैं जो मेरी और आपकी खुद जो है बहुत सी पैदा करता है, और जिस पे मैं और आप अगर मेहनत करें तो मैं और आप उस पर उसको जो है अपनी जो मुश्किलात हैं या परेशानियां हैं उनको मैं और आप जो है वो उनको ओवरकम कर सकते हैं और उनको शिकस्त दे सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक तो हो गया डिग्री की बात, दूसरा हो गई बच्चों की शादी की बात, तीसरा जो है हम में से अक्सर लोगों की जो ख्वाहिश होती है वो ये कि 2 रूम के घर के अंदर कब तक रहेंगे, और किराए के घर में सारी जिंदगी किराए में गुजार दी, आंसुओं से फिर हम रोते हैं ना, अम्मी पीछे अपना हमारा घर था और इतने प्लाट थे, इतनी ज़मीनें थी, नौकर चाकर थे, बाहर आ गए और हमने तो सोचा था कि यहाँ पे डॉलर दरख्तों के साथ लगे हुए होंगे और यहाँ पे पीछे वालों को तो अब भी ये लगता है जिन्होंने अभी तक पहुँचे नहीं है ना, तो यही लगता है कि यहाँ पे सोने की जो है वो काने हैं, डॉलर दरख्तों के साथ हैं, बड़ी खुशियाँ हैं, बड़ी मुसरतें हैं, बड़ा सुकून है। लेकिन मैं ये नहीं कहती अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई नेमतों में चीज़ों में कमी है, जो अल्लाह के अल्लाह ने जो कुछ उनको दिया है और उसमें कनात करते हैं ना, तो पाकिस्तान में ही उनके लिए डॉलर हैं, इंडिया में भी उनके लिए डॉलर ही डॉलर हैं, और जिनके अंदर कनात नहीं है उनको यहाँ आकर भी जो है ना वो दौड़ रहे हैं, घर में जितने लोग हैं सब के सब जॉब कर रहे हैं, उतनी ही गाड़ियाँ हैं, उतने ही क्रेडिट कार्ड हैं, उतने ही बैंक जो थोड़े दिनों के अंदर बैंक करप्सी जो है वो अनाउंस हो जाती है क्योंकि वो जो कुछ आगे यानी बेहतर से बेहतर की तलाश जो थी उसमें वो लोग जो है या मैं और आप जो है मैं और आप उस पे जो है वो रुके नहीं, क्योंकि मुझे और आपको हम में से कुछ लोग ये समझते हैं कि सुकून और खुशियाँ डिग्री से मिलता है, डिग्री से मिल सकती है, कुछ लोग ये समझते हैं कि सुकून और खुशियाँ अपने घर से मिलती हैं, अपना घर होना चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, बड़ा घर तो है लेकिन उसके साथ एक कॉटेज भी होनी चाहिए, और इतना अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे कॉटेज में बैठ के, पता नहीं अंदर क्यों बैठे हैं। मैंने तो सोचा था मेरा बस चलता मैं तो रात को यहाँ आती, हिरन आते होंगे सुबह फजर में यहाँ पे पानी पीने कहीं निकलते होंगे तो उनको मैं मिलती देखती, नेचर क्या बात है नेचर की के असल बात जो है वो बड़ी खूबसूरत है कि नेचर जो है जब उसके इंसान करीब होता है तो वो रब के करीब होता है ना, तो नेचर जो है हमें क्या करती है कि हमें वो रब के करीब करती है। तो अब आना तो सुबह से चाहिए था कि जिसे हम ढूंढने निकले हैं कोहो दश्तो सहरा में, सबा हर सू लिए फिरती है गुलशन में पयाम उसका, नेहा खानों में दिल के और आलम की जबानों पर, जहां देखो जिधर देखो वही मौजूद नाम उसका। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हर जगह है, ये पत्ते हिल रहे हैं, इतना खूबसूरत मंज़र है जो इस वक्त, यानी आप सोचें कि अंदर भी बैठे हैं और बाहर की पूरा नज़ारा जो है वो मैं और आप देख रहे हैं, है ना। तो वाकई ज़िंदगी इंसान की है, मानिदे मुर्गे खुशनवा, शाख पे बैठा कोई दम चहचहाया उड़ गया। तो ज़िंदगी तो यही है ना, इधर दरख्तों पे परिंदे बैठते हैं चहचहाते हैं फिर उड़ जाते हैं, तो मैं और आप भी बहुत थोड़ी देर के लिए दुनिया के अंदर हैं। लेकिन अब जैसे यानी एक औरत रोने लगी कि मेरी जो बहन है ना सगी बहन, देखो उसने भी घर बुक करवा लिया, तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर कहने लगी कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई, पता नहीं मेरे माँ बाप ने कहाँ ब्याह दिया, अभी तक जो है ना मेरा अपना घर नहीं है ना। तो मैंने कहा मैं तो ये समझती थी आपका अपना घर है, कहती हाँ ये है तो सही पर टाउन हाउस है ना, ये टाउन हाउस है, तो देखो पता नहीं, अब मियाँ को कहती तो रहती हूँ और अब सोफ़ा भी चाहती हूँ कि मेरे पास लेदर का सोफ़ा आ जाए, तो मैंने कहा कि आपका तो दूसरा सोफा भी नहीं है। नहीं, वो कल किसी दोस्त के घर गई थी, इतना फलां किस्म का उसका सोफा, इतना मजे का, इतना अच्छा, और मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे पास भी हो। तो अभी तक मियाँ जो है ना मुझे टरखाते जा रहे हैं ना, को अब वो जो मेरी सास है उसके ही मुतालबे पूरे नहीं होते, मेरे वो जो ससुराल वाले हैं बस उनकी तो नजर ही हम पर है हर वक्त, मेरे मियाँ बस उन्हीं के साथ फोन पर होते हैं और उन्हीं को देते रहते हैं। मेरे मियाँ को तो पता नहीं क्या, जूं ही अपने भाइयों के पास जाते हैं फिर मुझे इनको कुछ नजर नहीं आता, मैं तो भूल ही जाती हूँ, और मेरे बच्चे तो इनको याद ही नहीं रहते ना। तो फिर हम क्या करते हैं, सास ससुराल अपने ससुराल वालों को बुरा भला करना शुरू कर देते हैं, कहना शुरू कर देते हैं। और यानी अपने वालदैन से भी जब भी बात करते हैं तो माँ से कहते हैं कि किराए के घर में रह रहे हैं आप लोग, तो हमेशा अमेरिका अमेरिका करते रहते हैं, कनाडा करते रहते हैं, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, किराए के घर में रह रहे, छोटा सा घर है, समझ नहीं आती चीज़ें कहाँ रखूँ, मेहमान आते हैं तो उनको कहाँ बिठाऊँ, और हर वक्त मैं जो हूँ फुल टाइम मुलाजमा हूँ, गाड़ी आपको पता है अम्मी इस बात का, गाड़ी मैं चलाती हूँ, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना, खाना पकाना, घर की सफाई करूँ, शौहर को भी क्या क्या मैं करूँ, मुझे तो लगता है मेरी मैं तो एक और ही, मैंने तो तसव्वुर किया हुआ था बाहर की जिंदगी का, तो मैं तो एक नहीं, और ऊपर से जो है वो फिर प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अभी मैं और बच्चे चाहती नहीं थी, एक काफी था मेरे लिए, लद्दू फिर प्रेग्नेंट हो गई हूँ ना, एक औरत ने तो खूब रोना शुरू किया कि मैं फिर प्रेग्नेंट हो गई हूँ ना। तो जो प्रेग्नेंट नहीं है वो भी रोता है, जो प्रेग्नेंट है वो भी रोता है, जिसके बच्चे नहीं है वो रोते हैं कि बच्चे नहीं है। क्या कोई टीचर बता सकती है कोई बच्चा कि मैं जो हूँ उसको मैं अपनी मैं उसको जो है अडॉप्ट कर लूँ, और जिसके बच्चे नहीं है वो भी रो रही है। मैंने कहा अल्लाह ने आपको एक इम्तहान में नहीं डाला, अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आप अल्लाह के दीन को सीखें और दूसरों को सिखाएं, दुखी इंसानियत है आप उनकी खिदमत करें, आपने ज़रूर किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है। कहने लगी नहीं नहीं टीचर मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं किसी को अडॉप्ट कर लूँ, तो बस मैं करना चाह रही हूँ, और मैं टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए भी इतनी दफ़ा मैंने ट्राई किया है, और जब मैं हम गए हैं तो वो ठीक नहीं, वो कहते हैं वज़न कम करो, वो कहते हैं आपको ये मसला है वो मसला है, अब बस आप मेरे लिए अब दुआ करें ना। टीचर मेरी अल्लाह ताला दुआ कबूल क्यों नहीं करता ना, क्या मैं क्या मुझसे कुछ गलतियां हो गई हैं, क्या मेरे मेरे मतलब अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गया है। तो जिसके औलाद नहीं है आप बैठें, तो अब आप देखें कि हज़रत आयशा सदीक़ा रदी अल्लाह के औलाद नहीं थी ना, निसफ सदी उन्होंने अल्लाह के दीन की खिदमत की है, 48 साल रसूल अल्लाह की वफ़ात के बाद वो ज़िंदा रहीं, और बड़े बड़े सहाबा तबा ताबईन ताबईन उनसे जो है उन्होंने दीन को सीखा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की घरेलू ज़िंदगी जो थी वो उनके ज़रिए जो है वो बाहर आई है। तो औलाद नहीं थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हंसते मुस्कुराते और खूबसूरत बहुत थी, बहुत यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको नवाजा। तो उन्होंने अपना टाइम कैसे गुजारा, जैसे हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि अब चलो जी अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे अब यूनिवर्सिटी चले गए हैं, बच्चों की शादी कर दी है, अपने घरों में खुश हैं, तो हम कह हम हर वक्त जो है कुछ औरतों का काम यह है कि अच्छा बच्चों की शादी कर दी है, बच्चे चले गए हैं, अब मसला क्या है कि बच्चे टाइम नहीं देते, वो तो वो नीली आंखों वाले के पीछे ही पड़ गया है, वो जो सफ़ेद फलां जो थी ना वो मैं कहती थी इंडिया की लड़की से शादी नहीं करनी, बड़े तेज़ होते हैं ये लोग। एक औरत ने कहा मैंने ये तय किया हुआ है कि मेरी बेटी की जब शादी का रिश्ता आएगा इंडिया का नहीं होना चाहिए, नंबर टू हैदराबादी नहीं होना चाहिए, नंबर थ्री वो एज में मेरी बेटी से बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर कुछ दिन गुजरे, फिर ज़ाहिर है मैं भी इतनी मसरूफ़ होती हूँ इतना टाइम नहीं मिलता, फिर एक दिन बात हुई तो कहने लगी कि जो सोचा था ना एग्जैक्ट ऐसे ही उसके ऑपोजिट हुआ है। मैंने कहा क्या हो गया, कहने लगी डॉक्टर का रिश्ता आया है, बच्चा बहुत अच्छा है, लायक है, पढ़ा लिखा है, हैदराबादी भी है, इंडिया का भी है, और मेरी एज में मेरी बेटी से बड़ा भी है, और अब मतलब कहती हैं कि इसको नसीब कहते हैं। अब क्या हुआ फिर रिश्ता वहाँ पे उसने कर दिया। तो बाज़ औक़ात हम अपने अपने जहन में खुद ही कुछ दावे कर लेते हैं, इमेज बना लेते हैं, कुछ नज़रियात कायम कर लेते हैं। याद रखें ऐसा नहीं है कि इंडिया के लोग बुरे और पाकिस्तान के बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि जट बुरे हैं और सैयद लोग बहुत अच्छे हैं। ये ठीक है कि सैयद ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी सैयद ज़ादी बेटी को फातिमा को कहा कि फातिमा बिन मोहम्मद, और अपनी बहन सफिया से कहा ए सफिया बिन अब्दुल मुतलिब, यानी सफिया बिन अब्दुल मुतलिब और ए फातिमा बिन मोहम्मद, यानी मैं भी तुम्हें जो है अल्लाह के यहाँ मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता, और अगर तुम में से कोई भी अल्लाह के पास पास होगा या जन्नत में जाएगा तो अपने हमलों की वजह से, है ना। तो किसी का ذات پات کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا الا یہ کہ وہ متقی ہو. تو اصل چیز جو ہے حسن عمل ہے. ذاتیں بہت اچھی ہیں, کوئی بھی ذات ہے, وہ ارائی ہے, وہ جٹ ہے, وہ جو ہے وہ کشمیری ہیں, اور یا وہ کچھ لوگ کہتے ہیں مہاجر ہیں, یا وہ اردو سپیکنگ ہے, کچھ بھی ہیں, بہت خوبصورت لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں. بہت پیار کی ضرورت ہے آج اس سوسائٹی کو, اور آج ہم سب کو بہت پیار کی ضرورت ہے. ایک دوسرے سے پیار کریں, محبت کریں, اور اپنے آپ کو پازیٹیو وے میں. ایک ہے پیسہ مسٹ ہونا, ایک ہے آپٹامسٹ ہونا. تو یہ ہماری مرضی ہے کہ میں اور آپ جو ہیں کون سا رخ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ بچوں کا ہونا یا بچوں کا نہ ہونا, دو باتیں ہیں نا. تو ان کو ہم نے دیکھا, بچوں والے بھی پریشان ہیں اور جو جن کے بچے نہیں ہیں وہ بھی پریشان ہیں. بجائے اس کے کہ جن کے بچے نہیں ہیں تو وہ سوچیں کہ اچھا اب مجھے کیا کرنا چاہیے, اپنے ٹائم کا, اپنی دولت کا, اپنی صلاحیتوں کا کیا استعمال کریں. بچے نہیں ہیں, اسی پہ روتے روتے جو تھی وہ میں نے زندگی گزار دی. جن کے بچے موجود ہیں, تو جب وہ چھوٹے بچے تھے تو میں روتی ہوں کہ رات کو سونے نہیں دیتا, پیمپر لگاتی ہوں تو اس کے دودھ کا ٹائم ہو جاتا ہے, دودھ دیتی ہوں تو اس کے سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے, ابھی تو میں اٹھ کر واش روم ہی گئی تھی, اس کے پھر جاگنے کا ٹائم ہو گیا. تو میں جو چھوٹے بچوں والی نا, جیسے یہ بیٹھی ہوئی ہیں, تو جن کا بچہ بھی ساتھ ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ میں بڑی مشکل میں ہوں. اور یہ جو بڑی خواتین جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں نا, بڑی ایج کے, لگتا ہے یہ بڑی جنت میں رہ رہی ہیں. وہ بڑی جن کے بڑے بچے ہیں وہ کہتی ہیں جتنی ہم قیامت سے ہم گزر رہے ہیں, یہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کیا اچھی زندگی تھی. ادھر سے پیمپر لگایا, منہ میں فیڈر دیا, اور پھر بس پھر اپنے مزے کرتے تھے. کبھی برنچ کی دعوت تھی تو کبھی لنچ کی دعوت تھی, تو کبھی کسی کاٹیج میں تھے, تو کبھی کسی مال میں تھے, تو کبھی کسی اس میں ونڈو شاپنگ کرنے گئے تھے, کبھی بیٹھتے تھے باتیں کرتے تھے, کیا اچھا زمانہ تھا. اور وہ کہتے ہیں کب اس ایج کو پہنچیں گے, کب میرے بچے, یہ تو پک اینڈ ڈراپ ہی میری جان نہیں چھوڑتا ہے نا. تو جن کے چھوٹے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں, جن کے بڑے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں. اور حقیقت ہے جوں جوں بچے بڑے ہوتے ہیں نا, مسائل اور ذمہ داریاں بڑی ہوتی چلی جاتی ہیں جوں جوں وقت گزرتا چلا جاتا ہے. اچھا اب جن کے بچے, جیسے ایک میری اسٹوڈنٹ جو تھی کہنے لگیں کہ ہم جب یہاں پہ آئے تو مجھے یہاں کے ماحول اور حالات کا فرق نہیں تھا, یعنی یہاں کے ماحول اور حالات کا مجھے فرق, یا یہاں کے ماحول اور حالات کی نزاکت کو میں اتنا سمجھ نہیں سکی کہ مجھے کس طرح سے یہاں پہ جو ہے رہنا چاہیے, کس طرح سے اپنے بچوں کے ساتھ میرا تعلق ہونا چاہیے. کہنے لگی بس مجھے تو لگا کہ ہر طرف جنت ہی جنت ہے, ہر طرف خوشیاں ہیں, ہر طرف ڈالر ہے, ہر طرف سہولتیں ہیں. تو کہنے لگی کہ کیونکہ پبلک اسکول بچے جا رہے تھے, فری ایجوکیشن تھی, کہنے لگی کہ پھر میرے بچے جو تھے ان کو, بڑا بیٹا جو تھا اس کی صحبت اچھی نہ رہی نا, پھر وہ جو ہے وہ مطلب جیسے جب جاتا تھا تو شام کو رات کو گھر دیر سے آتا تھا. کہنے لگی پتہ ہے پھر ٹیچر کیا ہوا کہ میرے شوہر نے سختی کرنی شروع کر دی, پھر اس نے دروازہ بند کرنا شروع کر دیا. پھر ایک دن میرا بیٹا کہتی میں ہر وقت کامتی رہتی تھی نا کہ بچہ پتہ نہیں کب آئے گا تو اس کے ابو کو پتہ نہ چل جائے, تو میں نے چھپا کر چابی باہر رکھنا شروع کی. میرے شوہر کو پتہ چل گیا اور پھر اس نے جو ہے وہ چابی مجھ سے چھین لی, اور پھر ایسا ہوا کہ بیٹا آیا دیر سے اپنے جس بھی جگہ پہ تھا, پھر میرے دروازہ نہ کھولا نا ہم نے, اور برف کا موسم تھا, سردی تھی, ٹھنڈک تھی, بچہ بہت دیر باہر رہا, پھر اس کے بعد پتہ نہیں پھر وہ کہیں چلا گیا. اور کہنے لگی کہ جیسے وہ دیر سے آتا تھا, بے شک وہ ڈرگز لیتا تھا, وہ بری صحبت میں تھا, لیکن وہ رات کے وقت گھر تو ٹیچر آ جاتا تھا نا, لیکن میرے شوہر کی سختی اور ہم اس کو جو اچھا ٹریٹ نہ کر سکے, اس کے بعد میرے بیٹے نے گھر میں آنا جو تھا وہ چھوڑ دیا, جو رات کے وقت آتا تھا. پھر وہ ایک دن غائب, پھر دو دن غائب, پھر وہ دنوں کے لیے غائب ہونے لگ گیا. اور پھر کہنے لگی کہ جو ہے وہ دوسرا جو میرا بیٹا تھا وہ بھی اس کو دیکھ کے رنگ پکڑنے لگا, کیونکہ بچے صحبت جو ہوتی ہے یا گھر کے اندر جو بڑا بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے تو بچے کہتے ہیں آپ ہی ایسے کر رہی ہے تو میں ایسے کیوں نہیں کر رہی, آپ نے اس کو تو روکا نہیں, آپ نے اس کو تو منع نہیں کیا, اس نے تو یہ کیا, اب آپ میرے بھی ساری پابندیاں ہیں. کیونکہ جوں پھر آپ کو شعور ملتا ہے تو آپ تھوڑا اپنا انداز بدلنے لگتے ہیں, پھر آپ اپنے آپ کو تھوڑا چینج کرتے ہیں, پھر آپ سوچتے ہیں ایسے نہیں تو میں ایسے کرتی ہوں, تو پھر اس وقت بھی وہ آپ کے ہاتھوں سے بچے جو ہیں وہ نکل کے جو ہیں وہ جانے لگتے ہیں. تو وہ بیچاری جو ہے بہت رو رہی تھی, اور بچہ جو تھا وہ ڈرگز میں مبتلا ہو گیا, اس کی صحبت اچھی نہ رہی. پھر ابھی ایک عورت پچھلے دنوں کہہ رہی تھی कि टीचर हमारे घर के अंदर जो है बहुत सख्ती, और वो रो रही थी। तो मैंने कहा अच्छा खैरियत, कहने लगी बस क्या बताऊं कि इतनी सख्ती के बच्चों ने बस कुरान पढ़ना है और ये करना है, और यहाँ तक के मियाँ मारते थे। और जो है वो एक दिन बच्चे ने मतलब ऐसे कुरान को करके कहा कि कौन है अल्लाह, क्या है अल्लाह, क्या है कुरान। तो कहने लगी उस दिन मेरे मियाँ जो थे वो उस बात से रुके जो उनका तरीका और अंदाज था। तो अब कुरान इस्लाम दीन में कहीं भी ऐसा नहीं है कि बच्चों को मारना शुरू कर दें। अगर बच्चा किसी बुरी सोहबत में है, किसी गलत जगह पे है, या गलत लोगों से उसका रابطہ ताल्लुक है, तो मेरी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको असल में जो हमने मोहब्बत और शफकत देनी थी, जो मैंने और आपने टाइम देना था, जब मैंने और आपने वो मोहब्बत और शफकत नहीं दी, मैंने और आपने उनको वो टाइम नहीं दिया, तो बच्चे जो थे जहां से उसको मोहब्बत मिली वो गलत मिली, वो गंदी मोहब्बत मिली, तो बच्चे वहां पे जाने लगे। जहां उनको, जहां बच्चों ने, दूसरे बच्चों ने उनको टाइम दिया और उनसे उनके वो दोस्त बन गए, गो के वो सही दोस्त नहीं थे। तो मेरा और आपका मसला ये है कि जो छोटी उम्र होती है ना बच्चों की, उसमें बच्चे जब वो स्कूल से आते हैं ना, कॉलेज स्कूल, छोटी उम्र में जब आते हैं, तो वो गाड़ी में बैठते ही कहते हैं कि मामा पता है फिर आज स्कूल में क्या हुआ, मामा ये हुआ। आप क्या चुप करके बैठो, मैं तो ड्राइविंग कर रही हूँ, तुम्हें नहीं पता थकी भी आई हूँ और अभी ड्राइविंग कर रही हूँ, बिल्कुल चुप कर जाओ अभी, ताकि मैं कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ अपनी ड्राइविंग पर। हम उनको गाड़ी में चुप कराते हैं, हम घर आते हैं, हम सोचते हैं अभी इनको मैंने लंच देना है, खाना देना है, ये करना है, वो करना है, बच्चा बात करना चाह रहा है, बच्ची बात करना चाह रही है, हम कहते हैं कि बस मेरा सर थका हुआ है, एक तरफ तुम्हारी दादी है, दूसरी तरफ तुम्हारा बाप है, तीसरी तरफ सुबह से मुलाजमों की तरह काम कर रही हूँ, छोटा बेटा है और उसको दूध पिलाना, उसको देखना, तुम्हें देखूं कि उनको देखूं कि उसको देखूं, फिर हमने उनको कोई टाइम नहीं दिया, और ऊपर से फिर अब होमवर्क का अभी मेरे ऊपर झंझट और बाकी है, अभी मुझे होमवर्क जो है वो कराना है। और मियाँ जो है देखें आते हैं खाना उनके लिए टेबल पर पड़ा होना चाहिए, पानी उनके लिए गिलास में डाल के दूं, और अखबार लेके बैठ जाते हैं, मैच देखना शुरू कर देते हैं, और इतना तक नहीं तौफीक होती कि घर में उनके बूढ़े वालदैन बैठे हैं कि उनको ही टाइम दे दूं। एक औरत रो रही थी, कह रही थी कि अपने सगे वालदैन को मेरा शौहर टाइम नहीं देता, टीवी पे बैठे रहेंगे घंटों, कहेंगे बस तुम जाके देख लो, तुम उनसे बचते हैं, यानी सगे वालदैन को जो बेटा टाइम नहीं देगा तो वो क्यों उम्मीद रखता है कि उसकी बीवी जो सुबह से लेकर शाम तक काम कर रही है वही टाइम देगी। अगर वो टाइम देगी बहुत अच्छी बात है, जन्नत कमाएगी, लेकिन ये कि अपनी जन्नत को खुद भी तो कमाना चाहिए ना, अपनी जिम्मेदारियों को खुद भी तो निभाना चाहिए ना। तो अब ये कि छोटी उम्र में बच्चा बात करना चाहता है, वो मेरे इधर हाथ पकड़ता है, मेरे उधर, मैं कहती हूँ जाओ अपने बाप के पास जाओ, बाप कहता है मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, सुबह से जॉब करके आया हूँ, थका हुआ हूँ, टीवी के सामने हूँ, मूवी देख रहा हूँ, जाओ अपनी मामा के पास। बच्चा देखता है पहले वो गेंद की तरह कभी इधर कभी उधर, तो एक दिन दो दिन चार दिन फिर बच्चा मेरे और आपके पास आना कम कर देता है, फिर वो अपनी बातें मेरे और आपके साथ शेयर नहीं करता, वो नहीं करना चाहता, और फिर वो अपने दोस्तों में दोस्ती करना शुरू करता है, लड़कियां लड़कियों में या लड़कों में जिससे भी वो आना उनकी तरफ जाना शुरू करती है, क्योंकि मेरे पेरी तो अपनी सोशल लाइफ है, मेरा अपना एक सोशल सर्कल है, मुझे अपने काम है जो मुझे करने हैं, मैंने जो टाइम देना था मैंने उनको टाइम नहीं दिया। अच्छा अब क्या हुआ, अब मुझे थोड़ी फुर्सत मिली अपने सोशल लाइफ से, बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चे जो थे उन्होंने बाहर दोस्तियां कर ली, उनके ताल्लुक बन गया। अच्छा फिर शादी का भी एक वक्त है, जैसे मैं और आप, जिन जिन वालदैन ने अपने बच्चों की शादी में ताखीर की है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम यानी हम सब, मैं किसी को नहीं कह रही, मैं जर्नल जो भी वक्तन फक्तन औरतें मुझसे बात करती रहती हैं, अपनी जो प्रॉब्लम बताती रहती हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में हैं, जिसकी वजह से बहुत परेशान हैं, कि आप बताएं टीचर के हम क्या करें, मैं उन सब बातों को यहाँ पे सामने लाकर डिस्कस कर रही हूँ, ताकि हम में से जो भी संभल सके, ताकि हम में से कोई भी अपने हालात को बेहतर कर सके। अब भी देर नहीं हुई, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई। तो इसमें जो है वो यानी शादी वक्त पर करना, एक एक खास एज पर, एक जमाने में 14, 12, 15 साल की उम्र में लड़कियों की शादियां कर दी जाती थी, फिर ये कि एक दौर आया, फिर 18, फिर एक दौर आया कि उसका रिएक्शन था कि जाहिर है कि ऐसे मसाइल से बाज़ पेरेंट्स गुजरे कि बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा कर लड़कियों की शादियां होने लगी, फिर उसका एक रिएक्शन आया कि नहीं बच्ची छोटी होनी चाहिए, छोटी एज की होनी चाहिए, लेकिन अब क्या है कि डॉक्टर भी होनी चाहिए और एज बड़ी हल्की होनी चाहिए, इंजीनियर भी होनी चाहिए, एज यही नहीं होनी चाहिए 20-22 की। अब आप देखें 20-22 में बच्चा इंजीनियर या बच्ची कैसे बन जाए, या डॉक्टर कैसे बन जाए, या वो स्पेशलिस्ट कैसे बन जाए, तो हमारे यानी जो मुतालबात या चीज़ें, लेकिन फिर भी یہاں کے جو مسائل ہیں جو اتنے شدید ہیں، اتنے بڑے ہیں، آنکھوں میں حیا نہیں، دل میں حیا نہیں، بچے جو اپنا سوشل سرکل میں ہیں یا سوشل میڈیا بہت فاسٹ جا رہا ہے اس وقت، اور میں اور آپ، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک انڈیا اور پاکستان میں ہیں، ابھی تک ہم گھر کے اندر ہیں، ایک ایک بچے کے پاس آئی فون ہے، ڈیٹا ان کے پاس ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ گھر کے اندر کمرے کے اندر ہے، لیکن وہ باہر ہے، وہ کس جگہ پہ ہے، وہ کس ویب سائٹ پر ہے، وہ کس سے بات کر رہا ہے یا کر رہی ہے، وہ کیا کہاں پر ہے، یہ مجھے اور آپ کو اس کا شعور نہیں ہوتا، اور باہر سب کو پتا ہوتا ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں، نہیں پتا ہوتا تو مجھے اور آپ کو پتا نہیں ہوتا۔ تو چھوٹی عمر میں ہم نے ان سے باتیں نہیں کی، بڑی عمر جب ہوئی، اب ہم عورتیں ہم روتے ہیں، بٹرلی روتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بچے ٹائم نہیں دینا چاہتے، بچے آپ نا بچوں کا صبح سے انتظار کرتے ہیں، اب آپ انتظار کرتے ہیں، میں انتظار کرتی ہوں، بچے صبح سے وہ کہتے ہیں ہم گھر میں نہیں پڑھنا چاہتے، آپ کہتے ہیں گھر تو بہت بڑا ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی شور کرنے والا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں لائبریری بیٹھ کے ہم پڑھیں گے، دوستوں کے ساتھ ہم پڑھیں گے، اچھا بیٹی ہے یا بیٹا وہ لائبریری میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کے گھر میں لائبریری کا ماحول ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ان کو ہم کچھ نہیں کہنے والے اور آپ ان سے کوئی کام نہیں کرانے والے، لیکن وہ میرے اور آپ کے پاس ٹائم اسپینڈ نہیں کرنا چاہتے، وہ باہر بیٹھ کے پڑھتے ہیں کہ وہ زیادہ ان کو بہتر لگتا ہے۔ آپ کا کام کیا ہے، ان کو لیں، ان کو چھوڑیں، آپ کا کھانا پکا ہوا ہے، اچھا آپ کھانا پکا ہوا ہے، آپ ان کے منہ میں بے شک نوالے ڈالتے جائیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ فون کو کھول لیتے ہیں اور فون کو جو ہے نا اس پہ چیٹنگ کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، کوئی مووی دیکھ رہے ہیں، کسی کو کوئی میسج کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بیٹا ذرا اتنی دیر، کم از کم، ایک ماں کہنے لگی، رو کر کہنے لگی، میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں صرف اتنی دیر جتنی دیر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں نا بس اتنا ٹائم مجھے دے دیا کرو، وہ کھانا جو میں نے تمہارے لیے بڑی محبت سے پکایا ہے، وہ جو میں صبح سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، بیٹا بس اتنا ٹائم جتنا ڈائننگ ٹیبل پر ہمارے بیٹھنے کا ٹائم ہے، اتنا ٹائم تو مجھے دے دو نا۔ تو بچے کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اور پھر بچے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، یہ کیا پکا دیا آپ نے، یہ کیا بریانی، یہ کیا قورمہ، قورمے بریانیاں یہ چیزیں کون کھاتا ہے، نہیں نہیں یہ نہیں ہم اب کھاتے، ذرا پورا چیز، یعنی ٹم ہارٹن پسند ہے تو مشرق سے لے کے مغرب تک جتنی یوتھ ہے ان سب کو پسند ہے، چاکلیٹ پسند ہے تو سب کو پسند ہے، اور جو چیزیں پسند ہیں آپ دیکھ لیں، لگتا ہے پانی کے اندر، ہوا کے اندر ایک اثر ہے۔ بحرین میں بھی میں کچھ سال رہی ہوں، امریکہ نیو یارک میں 8-10 سال رہنے کا اتفاق ہوا، اسی طرح بحرین، اور یہاں بھی 8-10 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، ایک سٹائل ہے پوری یوتھ کا، آپ نے اور میں نے جو بھی کوششیں کی، جو بھی محنتیں کی، وہ ڈفرینٹ ہے، بچوں کا سٹائل ایک ہی ہے، ان کے بات کا، ان کا انداز کا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی انڈیا والے سے شادی نہیں کرنی، ابھی پاکستانی سے شادی نہیں کرنی، ابھی ارائیوں میں نہیں کرنی، ابھی جٹوں میں نہیں کرنی، بچے بہت آگے نکل چکے ہیں، اور ہم اسی چکر میں رہتے ہیں، اور اتنے میں بچہ کہتا ہے، ابھی ایک ماں رو رہی تھی کہ بچے نے نا ایک غیر مسلم سے جو ہے نا اس کے ساتھ وقت گزار رہا ہے، تو میں نے اسے کہا کہ آپ اگر وہ کون ہے، عیسائی یہودی اہل کتاب کی عورت سے نکاح جائز ہے لیکن اگر کلمہ پڑھ لے تو اور اچھا ہے، تو کہنے لگی وہ تو اس کے لیے تیار ہے وہ لڑکی، تو میں نے کہا پھر کیا مسئلہ ہے، کہنے لگی نہیں اصل میں وہ دل سے نہیں پڑھتی نا، میں نے کہا آپ نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا، آپ شکر کرو وہ کسی ہندو سے نکاح نہیں کر رہا، وہ کسی سکھ سے نکاح نہیں کر رہا، ابھی وہ تمہارے پاس آ رہا ہے نا، اس کا نکاح کر دو اس کا، لیکن ٹیچر یہ وہ، پھر ایک عورت آئی اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آئی، بیٹے نے کیا کہا، بیٹے نے کہا مجھے پتہ چلا کہ آپ کی یہ اسٹوڈنٹ ہے، میں نے کہا بیٹا آپ بولو، کہنے لگا کہ میں ایک لڑکی سے پسند، اسے محبت کرتا ہوں، اسے پیار کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میری ماں کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لڑکی، میری ماں کہتی ہے بالکل تمہاری اس سے شادی نہیں کروں گی، تو اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ سوچ لیں میں تھی، اب وہ لڑکا تھا تو میں نے اپنے میاں کو بلا لیا، میں نے کہا بیٹا اگر آپ برا نہ مانو میں ان کو ہی بلا لوں، تو چلو میں نے کہا بعض اوقات بچے ایسی بات کرتے ہیں کہ مرد زیادہ اچھے تھے، تو میں نے کہا، تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں آنٹی، تو میں نے ماں اور بیٹا اور میں اور میرے میاں، تو ہم نے بات کی، تو کہنے لگا کہ ہم کوئی گناہ کر سکتے ہیں، میں اپنی ماں کی منتیں کرتے ہوئے اتنے دن گزر گئے ہیں، اگر ہم نے کوئی گناہ کر لیا تو میرے ماں باپ اس کے ذمہ دار ہوں گے نا، ہم کہتے ہیں ایک تو الحمدللہ اس کو سمجھایا، اللہ نے کی توفیق سے اس کو بات سمجھ میں آ گئی، پھر اس نے اپنے بیٹے کی شادی اسی سے کر دی، اب کئی سال گزرنے کے بعد میں نے اسے پوچھا اب بتاؤ کیسی ہے، کہنے لگی بہت اچھا تھا مشورہ آپ کا، بہت اچھی ہے، سب ٹھیک ہے، یہ ہے وہ ہے، اور جو ہے میں، میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے، جیسے ابھی ایک عورت جو ہے اس کا بیٹا شادی کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے کہا، میں نے کہا تو پھر آپ اس کی شادی کیوں نہیں کر دیتی، کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ نا گاڑی کے لیے تو پیسے بنا لے نا، تھوڑا اپنے قدموں پہ تو کھڑا ہو جائے نا، मैंने कहा कि देखो अगर अभी वो कह रहा है ना शादी कर ले, बेटी कह रही है या बेटा कह रहा है, बेटी भी कहती है, एक और कहने की मेरी बेटी कहती है अभी मैं यूनिवर्सिटी में गई और कहती है बस मेरी शादी कर दो। मैंने कहा मुंह से कहती है ना, इसको समझाओ बताओ कि ये जिम्मेदारियां, ये मसाइल है, ऐसे ऐसे है, लेकिन शादी कर दो अगर वो नहीं मानती तो। अपने हाथों से ये मौका मत निकलने दो, क्योंकि अगर आज तुम नहीं करोगे वो अपने हाथों से शादी कर लेगी, फिर वो किसी से भी कर लेगी, फिर वो उसको लगेगा कि आप जो आपने जो अपना काम था करने का, हमने वो फर्ज जब अदा ना किया, क्योंकि पाकिस्तान का माहौल इंडिया का डिफरेंट था। अब जो है मीडिया बहुत फास्ट है, बच्चे हर वक्त हर चीज के अंदर होते हैं, डिफरेंट लोगों से उनके कॉन्टेक्ट्स हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि बस अब कल जाएं शाम को घर जाएं सबके आप निकाह कर दें, मैं ये नहीं आपसे कह रही, लेकिन आप अपने घर के हालात को देखें, अपने बच्चों से दोस्ती करें, उनसे बात करें, क्योंकि मेरा और आपका इस वक्त का सबसे बड़ा मसला हमारे बच्चे हैं। बच्चे बात नहीं करना चाहते, बाप और बच्चों में, लड़कों और बाप में बड़ी लड़ाई है, यानी माँ जो है ना, माएँ सैंडविच बनी हुई हैं। एक तरफ बच्चे कहते हैं कि आप इस मैन को छोड़ क्यों नहीं देती, ये मैन जो है ये मतलब ये, और बाज़ औक़ात जो है वो बच्चे अलग रह जाकर रहना शुरू कर देते हैं। बेटी, एक औरत रोने लगी, कहने लगी कि मेरी बेटी, सिस्टर डू यू बिलीव मी कि मेरी बच्ची अलग रह रही है, शराब पीती है, किसी गैर के साथ रह रही है, और मैं जितना उसको समझाती हूँ उसके बाद उसने अपना फ़ोन नंबर चेंज कर लिया है। और आप, मैं उसके लिए बहुत दुआ करती थी, फिर मैंने बहुत दिन पहले एक ख्वाब देखा उसकी बेटी के बारे में, मेरी वो स्टूडेंट थी, उनकी फैमिली के बहुत से लोग मुझसे पढ़ते थे, ये पहले की बात है, यहाँ की न्यूयॉर्क की है। तो मैंने उसको कहा मैंने तुम्हारी बेटी के बारे में बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है ना, दुआ करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसकी बेटी वापस पलट आई, अब माशाल्लाह बहुत अच्छे हाल में है और दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ। तो एक बात और बहुत अहम है कि बच्चों से लिंक मत तोड़े, कितने ही वो बुरे क्यों नहीं हो गए। डॉक्टर जो है हमेशा बीमारी जो है ना उसका इलाज करता है, बीमार से कभी नफरत नहीं करता। मेरे और आप जैसे माँ बाप का मसला ये है कि हम जो है बच्चों से नफरत करने लगे हैं, यानी कहीं माँ करती है कहीं बाप करता है, और हम बच्चों को सही टाइम जो है वो नहीं देते। तो बच्चों को समझें, उनसे बात करें, उनकी सतह पे आकर उनसे बात करें। और मैं और आप जो हैं, यानी हम में से बहुत से लोग जो हैं, जो भी मेरे और आपके मसाइल हैं, यानी बाज़ लोग बच्चों की वजह से परेशान हैं, बाज़ औरतें ना शौहर की वजह से बड़ी परेशान हैं कि मियाँ जो है अपनी जिम्मेदारियाँ अदा नहीं करता। एक औरत जो थी उसने कहा कि मेरा मियाँ डॉक्टर से, मेरी अम्मी ने शादी की अबू ने, फिर मैंने जॉब करती रही और मियाँ मेरे अपने डॉक्टरी के इम्तहान पास करता रहा। फिर जब उसने इम्तहान पास किए, वो जब टीचर जाता था ना बाज़ार, जब भी मॉल जाता था, यानी यहाँ तो मॉल में जाकर वो कहता था कि फलां भाई के लिए और फलां भाभी के लिए और उसके बच्चों के लिए ना ये चीज़ें खरीदनी है, और मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए वो चीज़ें शॉपिंग या वो मोहब्बत उसके लिए नहीं थी। जैसे बस मैं एक डॉलर कमाने की मशीनरी बनी रही, यहाँ तक कि वो डॉक्टर बना, और जब सारे इम्तहान उसके पास हो गए और जब उसने तनख्वाहें लेनी शुरू की तो वो पीछे वालों को भेजना और पीछे वालों के लिए करना, तो मेरे वो दिल से ही उतर गया। कहती है मैं जॉब करके बाहर से आती हूँ, मैं आपको और मजीद नहीं बता रही कि वो क्या जॉब करती थी, इमानतें होती हैं, मैं जनरल बात कर रही हूँ। तो कहने की मैं जॉब करके आती थी रात को 8-9 बजे, तो मैं बिलीव में रात गाड़ी में गुजार देती थी, मेरा उस घर के अंदर जाने को दिल नहीं चाहता था, इसलिए कि इस शौहर के दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है ना, तो बाहर के लिए पीछे के लिए। तो मुझे लगता है कि बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादती करते हैं, औरत को भी बाज़ औक़ात जो है मोहब्बत की ज़रूरत होती है, बच्चों को मोहब्बत की ज़रूरत है, शौहर की मोहब्बत की। और अव्वल ख़वेश बाद दरवेश, और नेकी की इब्तदा, मोहब्बत की इब्तदा, गिफ्ट की इब्तदा घर के अंदर से करनी चाहिए। बाज़ औक़ात मियाँ लखपति होता है, करोड़पति होता है, लेकिन ज़रूरत होती है कि बाहर जब घर आए तो कहे कि ये तुम्हारे लिए फूल आज मैं लाया हूँ। फूल थोड़ी देर में मुरझा जाएगा, पत्तियाँ उसकी बिखर जाएंगी, लेकिन शौहर का अपनी बीवी के लिए फूल लेकर आना बीवी को बहुत खुश कर देता है। वो आगे पीछे आती जाती है, कहती है मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करता है। कभी कभी शौहर का अपने बीवी के लिए कोई तोहफा दे देना, बहुत कीमती तोहफे की ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी हो जाए तो उसका तोहफा दे देना, कभी कभी उसको खाने पर बाहर ले जाना, तो छोटी छोटी औरतों की भी ख्वाहिशात होती हैं, तो उनको मोहब्बत देना, उनको शफकत से डील करना, तो जब ऐसा तवज्जो नहीं मिलती तो बाज़ औरतें भी, जैसे उस बच्ची की माँ मेरे पास बार बार आती थी ना, कहती थी आपकी वो बात सुनेगी, आप वाकई वो मेरी बात सुनती थी, लेकिन वो ये कहती थी आप कहती हैं आप टीचर, फिर भी मुझे कहती है मैं उसके पास चली जाऊँ, तो मैं चली जाऊँ, मेरे लिए उसके, मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है, आप मुझे बताएं फिर इस्लाम इसका जो है मुझे क्या जवाब देता है, तो वो मुझसे सवाल पूछती थी। बहरहाल फिर उसने सेपरेशन ले ली और उसके बच्चे थे और फिर बड़े बाकी बातें कहानियां सबकी डिफरेंट हैं, सबके डिफरेंट मसाइल हैं। तो बात यह है कि मुझे और आपको घर बनाना है और मुझे और आपको घर की ज़रूरत है। घर जो है बिल्डिंग से नहीं बनते, वो अटैच हों डिटैच हों वो टाउन हाउस हों, इससे घर नहीं बनते, घर मोहब्बत और शफकत से मिलते हैं। बाज़ औक़ात ये जो इनर पीस, ये जो पीस है और हैप्पीनेस है, हम बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, बाहर बाहर का मौसम है, फूल खिले हैं। फरवरी में मेरे बेटे की डेथ हुई थी, मार्च, मुझे नेचर बहुत पसंद है, यकीनन सबको ही पसंद होती है, लेकिन जैसे कुछ लोगों की वो कमज़ोरी होती है नेचर, इतनी पत्ते। वो एक दफ़ा किराए का घर लेना था, यानी किराए पे घर देखना था, तो देखने के लिए गई तो बाहर पीछे गई बैकयार्ड में, तो वहाँ पुदीना लगा था, पता नहीं सब्ज मिर्चे लगे, ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें, मैं इतनी उसको देख के खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, तो जो मालिक मकान थे उन्होंने कहा लगता है ये लोग ले लेंगे, शायद कहते हैं तो लग रहा है वो जो 1000 में मिल रहा है 1500 में मिलेगा, क्योंकि तुम वो पुदीने और पत्ते और उन चीज़ों के पीछे तुम इतना पड़ गई, मतलब तुम इतनी उनकी तारीफ करने लगी। तो मैंने कहा कि अब वो क्या बढ़ाना है, किराया नहीं बढ़ाना, बस मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि बस मैं उसको देखने लगी। तो बाज़ औक़ात जो चीज़ आपको बहुत पसंद होती है ना, तो आप उस वक्त वो नहीं देख रहे होते कि क्या किस जगह खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं। तो बहरहाल असल बात यह है कि हम में से बहुत से लोग इसलिए रो रहे हैं कि अब तक किराए के घर में हैं, पीछे नौकर चाकर थे, अब तक नौकर बन के काम कर रहे हैं, है ना ये बात। अच्छा, बाज़ लोग जो है हम में से इसलिए रोते हैं कि यानी परेशान है कि मेरा वेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ना तो ये लगता है सबका प्रॉब्लम है ना कि वेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अच्छा, डॉलर बहुत तेज़ी से बढ़े तो कोई मसला नहीं है ना, है ना। कपड़े बहुत तेज़ी से मेरे और आपके आते हैं, पाकिस्तान जाते हैं तो फिर कपड़े नई ब्रांड के लेते हैं, और जो है वो ब्रीज़ा तो लिया था पहले मैंने, लेकिन ये कि अब जो है मोती सितारे वाला आ गया है, अब ब्रीज़े में नए डिज़ाइन आ गए हैं, इतने खूबसूरत। मैं जिस दुकान में जाती हूँ, मैं जिस प्लाजे में जाती हूँ, मैं 2-4 जो है ना वहाँ से जो है ना फुड़वा के ही निकलती हूँ। अच्छा, अजीब बात है, अभी पिछली दफ़ा जब आई थी ना, अभी मैंने उनके टांके तोड़े नहीं हैं, अभी मैंने खोला नहीं है उन पर अटैची, मेरे खुले नहीं हैं। एक मेरी स्टूडेंट कहने लगी के मेरे ब्रीज़ा के सूट इतने कीमती, इतने अच्छे, अभी मैंने पिछले खोले नहीं, मैं फिर पाकिस्तान गई, मैं और ले आई, तो कहने लगी कैसे आपका हौसला है कि आप दूसरों को दे देती हैं आपके पास जो तोहफा चीज़ होता है। मेरा तो बिल्कुल हौसला नहीं होता कि मैं दूसरे को दे दूँ, इतने कीमती, इतने अच्छे, इतनी मेहनत से मैं लाई हूँ, मैं खुद ही पहनूंगी। लेकिन मसला मेरा टीचर ये है कि जो पहले लाई थी ना वो मुझे छोटे हो गए हैं, अब मैं दूसरे लाई हूँ मैं फिर मोटी हो गई हूँ, और रखने की मेरे पास जगह नहीं है, अटैची मेरे बड़े हैं, अलमारियां मेरी बड़ी हैं। तो ये तो हम सबका मसला है कि पहले पूरे नहीं आते, और जो है दस्तरखान इतना सजता है इतना अच्छा, और यानी पहले वे ऑफ लिविंग कमज़ोर था, इतना अच्छा स्टेटस नहीं था, वे ऑफ लिविंग मेरा अच्छा नहीं था, तो उस वक्त जो है साइकिल चलाते थे, मोटरसाइकिल हमारे पास थी, ठीक है। अब ये है कि और बहुत चीज़ें अच्छी खाना चाहते थे लेकिन उतना अच्छा अफोर्ड नहीं करते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मेरे पास डॉलर की कमी नहीं है, अब मेरे पास गाड़ी है लेकिन अब मैं वॉक करती हूँ, अब मेरा दस्तरखान सजा हुआ है लेकिन अब मैं खा नहीं सकती, हैं? तो पहले वैसे नहीं खा सकते थे, अब ऐसे नहीं खा सकते, पहले वैसे गाड़ी पे नहीं बैठ सके, अब वैसे नहीं बैठ सकते, थोड़ा दूर ही टीचर हम गाड़ी उतार खड़ी करते हैं ताकि वॉक कर सकूं, क्योंकि मुझे इतने 1000 स्टेप जो है ना दिन भर में लेने हैं, इतने 1000 स्टेप्स लेने हैं मुझे। मैंने एक, मुझे अभी मैं गई थी 2 दिन पहले, गई थी हमारे घर के पास वो वेस्टडेल मॉल है, तो वहाँ पे एक औरत बेचती है सैंडविच वगैरह, क्या उसका प्लाजे का कोई नाम है, बर्गर, ये वो मुसलमान है तो बड़ी अच्छी, उसे जब मेरे बेटे की डेथ हुई तो उसको बहुत से लोगों ने जाके वहाँ से सैंडविच वगैरह भी लिए होंगे, उसको जाके बताया कि वहाँ एक औरत है, ये है वो है जो भी, तो बहुत अच्छी मिलती है और बात कर। तो कहने लगी कि बहुत बहुत ही, जैसे अब ये नहीं किसी को कहना कि आप बहुत कमजोर लग रही हैं, वीक लग रही हैं, क्या कहना है, आप बहुत स्मार्ट लग रही हैं, है ना। तो और किसी को ये भी नहीं कहना कि आप बहुत मोटी हो गई हैं, आप हाँ उसके लिए भी आपने बहुत मोहतात लफ्ज यूज करने हैं, है ना जी। कैनेडा रास आ गया, बहुत अच्छा, इन्होंने मेरे इस वक्त हेल्प कर दी कि आपको तो कैनेडा रास आ गया, लग रहा है आजकल बहुत खुश हैं ये वो जा। तो मैंने कहने, मैंने कुछ नहीं उसको कहा, मैं बहुत बिजी थी, हम कुछ काम था, बैंक गए थे, तो मुझे पकड़ कर कहने लगी आपने मुझे देखा मैं कैसी हो गई। मैंने कहा हाँ आप तो बहुत अच्छी लग रही है। मैंने कहा लगता है आप हमें तो बर्गर भेजती हैं, खुद आप बर्गर नहीं खाती। कहने लगी वाकई रियली मैं नहीं खाती, वो तो इतनी जो है वो अनहेल्दी फूड है और उसमें इतनी कैलरीज हैं तो मैं नहीं खाती। और वैसे भी अब एक शादी पे जाना है, एक खास कपड़े पहने तो अपने आप की जो है ना वो वजन जो है ना वो कम कर रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान जाना है, तो अब मैं जाने वाली हूँ पाकिस्तान। तो मैं उसकी बात पे सोचती रही। तो देखिए हम में से कुछ लोगों के गोल्स हैं, किसी की जिंदगी का गोल जो है या बड़ी ख्वाहिश उसका अपना घर है, किसी की जिंदगी का गोल उसके बच्चे हैं, किसी की जिंदगी का गोल जो है इस वक्त स्मार्ट होना है, किसी की जिंदगी का गोल जो है वो मियां को खुश करना है। तो हम में से हर एक की कुछ ना कुछ ख्वाहिशात हैं और कुछ ना कुछ तरजीहात हैं, लेकिन मैं और आप अगर अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो यूं लगता है कि हमारे पास सुकून नहीं है। बहुत जो दौलतमंद हैं, जैसे आज मैं बैठकर जो है वो डाटा कलेक्ट कर रही थी कि जो रिचेस्ट लोग हैं दुनिया के तो उनकी डेथ कैसे हुई, तो एक मेजॉरिटी की डेथ जिसमें पॉलिटिशियन भी थे, जिसमें म्यूजिशियन भी थे, जिसमें एक्ट्रेस लोग जो थे वो भी थे, ज्यादा लोगों की डेथ जो है वो सुसाइड से हुई है, क्योंकि बहुत दौलत थी लेकिन दौलत उनको खुशी ना दे सकी, और बहुत दौलत के बाद वो अपनी गमों को छुपाने के लिए और खुशी की तलाश में वो नींद की गोलियां लेते थे, वो अल्कोहल का एक गिलास के बाद दूसरा अल्कोहल का गिलास, फिर एक तीसरा गिलास, एक मूवी के बाद फिर एक दूसरी मूवी, फिर एक तीसरी मूवी, फिर अच्छे सच्चे दोस्त की तलाश में वो नाइट क्लब्स में गए, फिर एक दो, फिर लेकिन कोई भी उसको, बाज़ुकात अपने ही गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने उनको जो है वो उनकी दौलत की वजह से उनसे दोस्ती की थी, तो इस तरह जो है आपस में किलिंग वगैरह हुई। तो म्यूजिक इंडस्ट्रीज को देख लें, पॉलिटिशियन को देख लें और रिचेस्ट पब्लिक बिजनेसमैन को देख लें, तो ऐसा लगता है कि बहुत दौलत है पास लेकिन इतनी बीमारियां हैं, इतनी तकलीफें हैं, खा नहीं सकते, हार्ट पेशेंट हैं खुदा ना खास्ता, हाई ब्लड प्रेशर है और ऐसे मसाइल हैं। हम अपने वालदैन को देख लें, हम अपनी सेहत को देख लें, है ना, तो बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। तो असल बात यह है कि मैंने और आपने सोचा था कि ये लड़की जो है ना अगर मिल जाएगी ना, या ये लड़का मिल जाएगा तो फिर मैं खुश रहूँगी। तो टीचर वो जब मैं एक बच्ची बहुत, एक लड़की बहुत खूबसूरत, उसकी ग्रीन आईज, बहुत फेयर कलर, बहुत अच्छी उर्दू, बहुत हाईली एजुकेटेड, बहुत अमीर फैमिली से, कहने लगी कि जब मैं पढ़ रही थी ना मेरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मैंने मोहब्बत कर ली, यानी मेरे प्रोफेसर ने मुझसे मोहब्बत कर ली। कहने लगी कि फिर थोड़ा सा मैं और जब उसके साथ आगे गई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो प्रोफेसर शायद किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है, लेकिन टीचर हम उसको अपने दिल से निकाल नहीं सके। फिर एक बहुत बहुत अमीर फैमिली से उसका ताल्लुक था, कहने लगी कि एक और बड़ी फैमिली का रिश्ता आया बिजनेसमैन का, तो मेरे वालदैन ने रिश्ता कर दिया। कहने लगी लेकिन पता नहीं हम अपने दिल से उसको निकाल नहीं सके। तो उसका मुझसे सवाल पूछ ये रही थी कि कहीं हम अल्लाह के यहाँ गुनाहगार तो नहीं होंगे, और कहने लगी कि ये जो हमारे मियाँ हैं ये बहुत बड़ा घर, बहुत बहुत बड़ा कोई उनका चेन बिजनेस सब कुछ, कहने लगी लेकिन बस इनसे हम उतना खुश नहीं रह सके। लेकिन टीचर हम कसम खा के कहते हैं हमने उनको अपने प्रोफेसर से रابطہ भी नहीं रखा और कभी उनसे हमने उनके इस तरह से नहीं किया सब कुछ, जैसे एक गलत, जैसे अपने शौहर के साथ पूरी हमने वफा की, लेकिन हमारा शौहर ये वाला किसी और के साथ अब इन्वॉल्व है, इस वक्त बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो अपने ही ऑफिस की एक लड़की के साथ वो इन्वॉल्व हो गया, तो अब हम हमारा इनसे दिल खराब हो गया है। तो मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं वो पिछला जो प्रोफेसर है उसकी वजह से, मतलब ये आपने इसके साथ दिल नहीं लगाया, तो यानी ये उसने अपने शौहर से हालात खराब होने से पहले से मुझे, मतलब क्लास में आती थी और ये वो कहीं की बात है। तो कहने लगी कि नहीं टीचर ऐसा नहीं है, और वाकई वो बच्ची सच कह रही थी, लड़की सच कह रही थी, छोटी थी बहुत उम्र में मुझसे। तो फिर कहने लगी कि टीचर अब इससे भी शायद उसके मियाँ ने तो फिर दूसरी शादी कर ली और उससे पता नहीं उसने तलाक ली। कहने लगी कि फिर वो जो हमारा प्रोफेसर थे जिनके बारे में हम सोचते थे, तो लेकिन वो एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। तो अब वो बहुत दुखी है, वो बहुत परेशान है। तो मुझे ये लगता है कि कभी हम सोचते हैं कि इस लड़के से शादी हुई ना तो मुझे खुशी मिलेगी, ये दौलत मिल गई ना तो खुशी मिलेगी, इस यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा ना तो मैं खुश रहूंगी। ये जो आईफोन है ना, अब ये पुराना है, अब नया आ चुका है, अब इसका कवर ऐसा होगा ना जिसमें मोती भी लटक रहे होंगे तो वो मुझे खुशी देगा। गाड़ी तो है मेरी, लेकिन गाड़ी जो है ना ये इसकी ब्रांड नहीं है, फलां गाड़ी होगी ना तो ये तब खुश मैं हो जाऊंगी। अच्छा, छोटी बेटी तो टाइम देती है, बड़ी बेटी जिस दिन टाइम देगी ना, ये जिस दिन वो मुझे कॉल करेगी ना, फिर मैं बिल्कुल टीचर ठीक हो जाऊंगी। मेरी बड़ी बेटी जो है वो तो मुझे टाइम देती है, मोहब्बत करती है, जो बेटा है ना वो नहीं मेरे बिल्कुल सुनता, जिस दिन वो मेरे करीब आएगा ना फिर मैं खुश हो जाऊंगी। तो मैंने और आपने जो है ना अपने खुद ही जो है बैरियर्स बनाए हुए हैं, खुद ही अपनी जो है वो मसाइल पैदा किए हुए हैं, खुद ही अपनी परेशानियां की रखी हुई हैं। याद रखें, फूल बहुत अच्छे लगते हैं मुझे और आपको, लेकिन फूल कांटों में होते हैं, और जब हम फूलों की तमन्ना करते हैं तो कांटों को भूल जाते हैं। हमें रात बहुत अंधेरी लगती है, बहुत तारीक लगती है, बहुत सख्त लगती है, लेकिन सूरज निकलने से पहले रात जरूर आती है। और रात कितनी ही गहरी क्यों ना हो, कितनी ही लंबी क्यों ना हो, गमों की जिंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, फिर जो है चमकता हुआ सूरज जरूर तलू होता है। तो याद रखें कि अंधेरा है, मुश्किल है, लेकिन इस बात को डिनाई मत करें, होप रखें कि कल सूरज निकलने वाला है, मेरी मुश्किलात की जो जिंदगी है ये खत्म होने वाली है, मेरे दिन जो है वो बदलने वाले हैं। तो हार्डशिप जो है या मेरी और आपकी जिंदगी में जो भी मसाइल है, किसी को शौहर की तरफ से है, किसी को औलाद की तरफ से है, किसी को दौलत की तरफ से है, किसी को बहन भाइयों की तरफ से है, किसी को ऑफिस में है, हर शख्स आजमाइश में है, हर शख्स, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो कहा कि मैं इंसान को आजमा रहा हूं। अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवाकुम अय्युकुम अहसनु अमला, लियब्लुवाकुम, लियब्लुवा का मतलब है कि इब्तला, सख्त ट्रायल में से गुजारना, और उसका मकसद ये नहीं है अय्युकुम अक्सरु अमला, ये नहीं, अय्युकुम अहसनु अमला, ये नहीं कहा कि क्वांटिटी अमाल की क्या ज्यादा करेगा, बल्कि बेस्ट अमल जो है वो कौन ज्यादा करेगा। तो मेरा और आपका इम्तहान है, तो जिसको अल्लाह बेटा दे रहा है ना, औलाद पैदा हो रही है, उसका भी इम्तहान है, और जिसका बेटा या औलाद दुनिया से अल्लाह ले रहा है ना उसका भी इम्तहान है। खुशियों में, खुशियों का इम्तहान ज्यादा सख्त है। जब बेटा दुनिया से जाता है ना तो दर्द होती है, दिल डूबता है, सांस रुकता है, इंसान गम के समंदर में डूब जाता है। बज़ाहिर सबके सामने होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, लेकिन जब जब बैठता है, तन्हा होता है, तो अपनी औलाद को याद करता है। औलाद का रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि जब तक खुद माँ ना बने ना, ये समझ में किसी के आ नहीं सकता। और औलाद की दूरी, एक तो है ना कि कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, अमेरिका चला गया, या यहाँ पे कहीं है, अलग अपार्टमेंट लेके रह रहा है, एक होप है, एक उम्मीद है कि वो आएगी या आएगा, और उम्मीद है कि मुलाकात होगी। लेकिन एक जो दुनिया से ही चला जाए, तो अभी दुनिया की जिंदगी में तो मुलाकात नहीं है, लेकिन एक होप है, एक उम्मीद है कि जन्नत का वो मेरे लिए दरवाज़ा खोलेगा या वो खोलेगी अगर मैं सब्र करूँगी। जन्नत का दरवाज़ा कौन खोलेगा? जिसकी औलाद फौत हो जाती है बचपन में या बड़े होकर, और अगर वो सब्र करते हैं। और सब्र ये नहीं है कि अल्लाह ताला आपने मेरे साथ ये जुल्म क्यों कर दिया, अल्लाह मेरा ही बेटा रोड एक्सीडेंट में फौत क्यों हो गया, क्योंकि एक औरत की बेटी, जिन दिनों मेरा बेटा फौत हुआ उसकी बेटी भी फौत हुई है, कहने लगी मेरी दोस्तों के बच्चे तो सबके ठीक हैं, मेरे साथ ही ये ज्यादती क्यों होगी, मेरे साथ ही ये जुल्म क्यों हो गया, मेरी ही बेटी को अल्लाह ने जो है वो क्यों ले लिया। तो मैंने कहा कि आप दूसरों के साथ कंपैरिजन मत करें, अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है किसको देना है और किससे लेना है, आपका इम्तहान है, अल्लाह आपके दर्जे बुलंद करना चाहता है। और देखिए, मैंने और आपने तो, हम तो इस पे ईमान लाए थे कि रदी तो बिल्लाह रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बे मोहम्मद नबीया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह शाम के अस्कार में से है ये कि मैं इस बात पे राजी हूँ कि अल्लाह मेरा रब है, और दीन इस्लाम जो है ना मेरी वे ऑफ लिविंग है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रोल मॉडल हैं। तो जब मैं कहती हूँ कि अल्लाह मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा हाकिम, वो मेरा रब है, तो फिर अल्लाह ने अगर मेरे बच्चे को 25.5 साल का होकर, जबकि मेरे मियाँ बीमार हैं, जबकि मेरे मियाँ को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, जबकि वो घर के अंदर हैं, वो जॉब नहीं करते, और अभी अभी मेरे बेटे ने जो है वो जॉब शुरू की थी, और जैसे आपको पता है कि फसल उरूज पर हो, जब बहार का मौसम हो, जब फल काटने का वक्त हो, जब बच्चे की जॉब आने वाली हो, जब उसके यानी उसके आप सेहरा बांधने का वक्त हो और उस वक्त उसकी डेथ हो जाए, और वो भी ये नहीं कि कोई बीमारी हुई उसको, यानी 2 माह 4 माह 3 माह पहले आप ज़हनी तौर पे तैयार हो जाते हैं। बाज़ औक़ात डॉक्टर कहते हैं कि अब ये हमारे बस में बात नहीं है, वो कि अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन एंड एट द स्पॉट ऑन द स्पॉट पुलिस आके आपको हाईवे की कहती है कि एवरी थिंग इज डन ऑन द स्पॉट, कि बेटा दुनिया से चला गया, तो आप सोच सकती हैं कि फिर उस माँ पे क्या गुजरेगी, उस बाप पे क्या गुजरेगी, है ना। लेकिन क्योंकि तकदीर पर ईमान इसे ही कहते हैं, कि हम कहते हैं कि अच्छा ये मेरे रब का फैसला है और ये मेरे लिए है, तो यकीनन फिर ये बहुत अच्छा होगा, है ना। तो आइए इस वक्त मैं और आप देखते हैं कि मुझे और आपको जो है वो सुकून जो है वो कैसे मिल सकता है। और इस सिलसिले में मैं 2-3 मिसालें आपके सामने रखती हूँ। एक मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा की मिसाल है। आप देखें कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो उस वक्त हालात क्या थे, कि बादशाह ने हुक्म दे रखा था कि जिसके हाँ बेटा पैदा हो तो पैदा होते ही उसको कत्ल कर दिया जाए। कितनी दुखी माँ थी ना, कि अगर उसके बेटा पैदा हो जाता है तो कत्ल कर दिया जाएगा। अब बेटा पैदा हो गया, अब वो चाहती थी किसी तरह, और पुलिस के लोग घरों में पता करते थे, लोग उनकी CID थी जो हर तरफ घूमती थी कि कहीं कोई औरत प्रेग्नेंट तो नहीं है, फिर खबर रखते थे उसकी, और बेटे को ले जाते थे और कत्ल कर देते थे, और फिर इनके यहाँ बेटा पैदा हो गया। और जब बेटा पैदा हो गया तो फिर क्या हुआ, तो अल्लाह ताला ने उनको ये कहा कि अपने बेटे को जो है वो उसमें जो है वो पानी में जो है वो बहा दे, और अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि मैं उसको तुम्हारे पास जो है फिर ले आऊँगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, अल्लाह ताला कुरान में उनकी बताते हैं, व असबहा फुआद उम्मे मूसा फारिगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का दिल ऐसा था कि खाली हो गया, जैसे मैं और आज आप एम्प्टी हैं ना, सुकून नहीं है, यकीन नहीं है, तवक्कुल नहीं है, ईमान नहीं है, जो भी मेरे और आपके हालात हैं, नया बिजनेस शुरू किया है वो अच्छा नहीं चल रहा, बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे सही वो उनको डिग्रियां वो अच्छी तालीम नहीं है। एक औरत कल बड़ी परेशान थी कि बच्चे जो है वो बड़े सही पढ़ नहीं रहे, मैंने कहा वो ठीक है ना, वैसे कोई किसी अखलाकी बुराई में नहीं है, मैंने कहा, तो कहने लगी नहीं, मैंने कहा कि वो कुछ जॉब कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हर शख्स ने ज़रूरी नहीं है कि वो डिग्री ले, जिसके हिस्से का रिस्क है, किसी को अल्लाह ने डिग्री के साथ देना है और अल्लाह ने बगैर डिग्री वालों को भी देना है। तो मैंने और आपने अपने कुछ क्राइटेरिया बना लिए हैं, डिग्री के साथ बगैर डिग्री के, और ख़ास। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि वो उस राज को जाहिर कर देती कि ये मेरा बेटा है जो पानी में बहता जा रहा है, लौला अर्रबतना अला कल्बिहा लितकूना मिनल मोमिनीन, अगर मैं उसके दिल को मजबूती से बांध ना देता तो। लेकिन अल्लाह ने उसके दिल को कब मजबूती से बांधा, जब उसने अल्लाह की बात जो थी उसको मान लिया, उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने जो उसको तरीका बताया उसने उसको जो है वो इख्तियार कर लिया। असहाबे कहफ जो थे उनके पास सबसे उनकी कीमती चीज़ उनका ईमान था, और जब उनका ईमान खतरे में हुआ तो उन्होंने जाके एक कहफ के अंदर, एक गार के अंदर पनाह ले ली, वो खड़े हो गए। तो अल्लाह ताला कहते हैं और रबतना अला कुलूबिहिम, तो उनके दिलों को मैंने बांध दिया और उनके दिलों को मैंने पीस नाजिल कर दिया। कब नाजिल किया, इस कामू, जब वो खड़े हो गए। मैं और आप कहते हैं कि जब अल्लाह पीस नाजिल करेगा ना, फिर मैं जो है ना उस वक्त खड़ी होंगी। कुरान का, इस्लाम का ये तरीका नहीं है। आपको डिप्रेशन से निकलना है, आपको उठकर खड़े होना है, आपको अल्लाह के फैसले जो है उसको कबूल करना है, क्योंकि यही तकदीर है ना। हम अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाते हैं, मन तो बिल्लाही व मलाइकतेही व कुतुबेही व रसूलेही वल यौमिल आखिरे वल क़द्रे खैरेही व शर्रे मिनल्लाही तआला वल बासे बादल मौत, तो हम यही सब चीज़ों पर ईमान लाते हैं ना। हमने तो इस बात पर यकीन किया है कि अल्लाह का फैसला अच्छा बुरा जो भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे बेटे की भी डेथ हुई तो मैंने कहा कि अच्छा मेरे प्यारे रब ने मेरे लिए ये फैसला जो था इसका रखा है, तो अल्लाह मैं तेरे इस फैसले पे बहुत खुश हूँ, और आज भी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मुझे याद आता है, बहुत याद आता है, लेकिन मैं क्या कहती हूँ कि अल्लाह तूने मेरे लिए यही चीज़ पसंद कर ली, बस आप मुझसे नाराज़ मत होना, मैं आपको कभी नाराज़ नहीं करना चाहती। जिस दिन डेथ की खबर आई थी और वो गैर मुस्लिम थे जो पुलिस मैन आए थे, मैंने अपने बच्चों से कहा बेटा ये मेहमान आए हैं इनको कुर्सियाँ ला के दो, मैंने उनको अपने बच्चों को कहा इनको फ्रिज से जूस ला के दो, इनके लिए पानी लेकर आओ। और वो जो भी हमारा रिएक्शन था, वो बहुत हैरान थी पुलिस जो हमसे आके बात कर रही थी उस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे बेटे के दोस्त थे वो अपने बाजू जो थे अपने सर पर बाजू रखते हुए रोते हुए हमारा घर और मोहल्ला भर गया, मस्जिद साथ वाली भर गई। तो उस वक्त भी जो लोग आ रहे थे मुझे उनकी फिक्र थी कि मेरे बेटे के मेहमान आए हैं, मेरे बेटे के मेहमान आए हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी और आपकी सबकी जिंदगी इम्तहान की जिंदगी है। किसी को अल्लाह लेके आजमाता है, किसी को अल्लाह दे के आजमाता है। तो अल्लाह के फैसले पे राजी रहना। तो उस वक्त भी मैंने अल्लाह अल्लाह से तब भी बातें करती थी, आज भी करती हूँ कि मेरी जिंदगी का जो भी इम्तहान है लेकिन मुझे हाईएस्ट मार्क्स में पास होना है। अय्युकुम अहसनु अमला, कि बेस्ट डीड कौन करने वाला है। और बेस्ट डीड क्या है, जिस भी जगह पे है, किसी को अल्लाह ने औलाद दी है, किसी को नहीं दी, किसी के बच्चे पूछते हैं, किसी के नहीं पूछते, किसी का शौहर मोहब्बत करने वाला हमदर्द है और उसके मसाइल को समझता है, उसकी इज्जत करता है। एक औरत रो रही थी कि मेरा शौहर मेरी इज्जत नहीं करता, गालियां देता है, टीचर मुझे उसके तोहफे अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो गालियां देता है। एक औरत कहने लगी मेरा शौहर कैंसर स्पेशलिस्ट है लेकिन टीचर बड़े गुस्से का है, जबान का अच्छा नहीं है, आप उसके मेरे शौहर के लिए मेरे लिए दुआ करें कि मैं सब्र करूं और उसके लिए दुआ करें कि वो नरमी कर ले। तो सुबह शाम दिन रात मैं जब लोगों को दुख में देखती हूँ, मेरा दिल चाहता है मैं उनकी आंखों के आंसू पी लूँ, मेरा दिल चाहता है उनके दामन में खुशियाँ बखेर दूँ, मेरा दिल चाहता है उनके चेहरों में मुस्कुराहटें हों, मेरा दिल मैं सोचती हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा दुखी हैं, मुझे तो अल्लाह ने बहुत नवाजा है, मैंने 25 साल अपने बच्चे के साथ खेला है, उसके खूबसूरत घुंघरियाले बाल, 6 साल का 6 फुट का उसका कद और बहुत लायक और बहुत जो है वो आगे ही आगे लगता था, हवाओं से बातें करना, बहुत तेज था, बहुत फास्ट गोइंग था, बहुत जल्दी जल्दी वो करना चाहता था। मैं उसे हर वक्त कहती थी बेटा मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ, मैंने तुम्हें साथ नहीं रखना पहले दिन से, मैं चाहती हूँ जो भी लड़की आएगी ना उसकी भी, लड़कियों की भी ख्वाहिशात होती हैं जब सास ससुर सब होते हैं, मैंने कहा तुम और तुमने नहीं जो है वो जो है उसको नहीं कभी कहना कि वो मेरी खिदमत करे, मैंने कहा अगर दबाना, मैंने कभी किसी से दबवाया नहीं है, ये भी बताऊं हम लोग शिकवा करते हैं ना कोई दबाता नहीं है, मैंने कभी बच्चों से दबवाया नहीं, किसी से भी नहीं, इसलिए कि बच्चा थोड़ी देर दबा करके हमारे मुंह को देखता है कब अब मम्मी कहेगी कि बंद मना करे। और जो भी दबाने वाली बात है ना, शौहर कहता है बीवी को कि मेरी वालदा को दबाओ, भाई तुम खुद क्यों नहीं दबाते, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मेरे शौहर ने ये बात नहीं कही लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ, तो मैं अपने बेटे से कहती थी मुझे तो वैसे मैंने तो कभी दबाया नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़े, मैंने कहा आपने खबरदार अपनी बीवी को मुझसे कहा ना, छोटे को भी अभी कहती हूँ, अभी उसको मेडिसिन में अभी रिसेंटली एडमिशन मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी रिसेंटली, तो मैं उसे कहती हूँ कि बेटा तुमने जो है वो मैंने तुम्हें साथ नहीं रखना, वो कहते नहीं मामा आपको मैंने जो है वो साथ मैं आपके साथ रहना, मैंने कहा नहीं। तो मुझे लगता है कि बाज़ औक़ात हम कहते हैं जितना बच्चे के करीब चाहते हैं बच्चा आपसे दूर चाहता है, आप परेशान होते हैं कि बच्चा तो मुझे छोड़ता जा रहा है, बच्चा तो मेरी बात नहीं सुनता, है ना। तो इन्हीं बहुत वक़ार के साथ, बहुत इज्जत के साथ, बहुत अच्छे तरीके के साथ हमें चीज़ों को आगे लेके चलना चाहिए, और अपने गम जो हमने खुद ही अपने लिए पाल दिए हैं वो गम हमें नहीं होने चाहिए। जैसे मुझे नेचर बहुत पसंद है ना, मेरे बेटे की डेथ के बाद मेरी बेटी और बेटा, 2 बच्चे हैं, 1 बेटी और 1 बेटा, वो दोनों उम्रे पे गए। तो जो छोटा बेटा है, जो अब 1 बेटा है, तो वो मेरे लिए जो अंगूठी लेकर आया उसमें फूल बना हुआ है। अच्छा, अब देखे उसको पता है मेरी माँ को नेचर बड़ी पसंद है, तो कहने लगा जब मैंने अंगूठी ली तो मैंने सोचा मैं इस पर फूल लेता हूँ ताकि मेरी मामा खुश हो जाए। तो मैंने कहा मैंने फिर उसने 2-4 दिन बाद देखा तो मैंने इसको इतना पहन नहीं रही थी, तो अब तो बहुत ध्यान से पहनती हूँ ताकि जब वो खुश हो जाए। तो मैंने कहा बेटा जब मैं पहनती हूँ ना तो ये फंसती है जगह जगह, फूल की कॉर्नर से बन गए हैं ना। तो कहने लगा, अब मुझे कहने लगा कि मामा मैं ये अंगूठी आप छोड़ दें, ये दे दें किसी को, तो मैं आपको ना अब नई अंगूठी लेके दूंगा, कोई कमाता नहीं है, स्टूडेंट है, पॉकेट मनी ये वो। तो मैंने कहा नहीं बेटा मुझे अंगूठी की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छी अंगूठी है। तो अच्छा अब ये कि मैं उसे कहूँ कि यानी मैं इस पर बुरा भला कहना शुरू कर दूँ, तो जो कुछ मौजूद है उस पर मुझे और आपको क्या करना है कि खुश होना है। तो याद रखें कि मैं और आप हम में से कोई भी शख्स ना पानी में गिरने से नहीं डूबता, पानी में खड़ा रहने से डूबता है। तो अगर मेरे बेटे की डेथ हुई है तो डेथ के बाद अगर अब डिपेंड करता है कि मेरा एटीट्यूड कैसा हो, मेरा बिहेवियर कैसा हो। तो बहुत से लोग जब जिंदगी में मसाइल मुश्किलात आते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, नींद नहीं आती गोली खाते हैं, डिप्रेशन की दवाई डॉक्टर साथ फौरन शुरू कर देता है, घर बेचने लगाया था, हमारा ख्याल था कि इस पर हमें जो है ये 1 मिलियन का बिकेगा, वो 1 मिलियन का नहीं बिका,
हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। बच्चे को मेडिसिन के लिए अप्लाई करना था, नहीं अप्लाई उसका दाखला हुआ, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। फलां जगह रिश्ता मैं चाहती थी, फलां जगह यानी खाते पीते हों, ये भी हो वो भी हो, वहां जगह रिश्ता नहीं हुआ, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो याद रखें कि मुझे और आपको परमानेंट मूव करना है, क्योंकि पानी में गिरने से नहीं मरता कोई भी, लेकिन अगर पानी में कोई खड़ा रहता है ना तो डूब जाता है। तो जो भी मेरे और आपके मसाइल और मुश्किलात हैं, मैंने और आपने उन मसाइल और मुश्किलात जो है ना उनको हैंडल करना है, उनको हल करना है, उनको जो है वो इस तरह से हैंडल करना है कि आगे बढ़ना है, मूव करना है, उस जगह खड़े नहीं रहना। और जैसे मसलन अगर कोई, जैसे अगर कहीं किसी को कोई जख्म हो जाए, तो जख्म को ठीक करने के दो तरीके हैं, जख्म बच्चे बुरी सोहबत में चले गए, जख्म शौहर के साथ मसाइल चल रहे हैं, ससुराल के साथ चल रहे हैं, मुख्तलिफ तरह के जख्म हैं, बहुत से लोग बात करते रहते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जो जख्म हुआ था हम उसको छुपाते हैं, या तो हम उसको छुपा सकते हैं और या ये कि हम उसकी बैंडेज करें, उसका इलाज करें। तो हम में से बहुत से लोग हम कहते हैं, जैसे बेटी घर रूट कर आ गई है, बजाय इसके कि हम किसी से ऐसे से बात करें जो मसले का हल करें, तो हम उसको छुपाते हैं, यहां तक के बात तलाक तक चली जाती है। या हम क्या करते हैं कि जो जख्म था हमने उसको छुपा दिया, तो और वो हम फेक रोल प्ले करते हैं। तो जो भी जब मसाइल है ना वो छोटे होते हैं तो उनको हल करना चाहिए, तो फेक किरदार अदा करने की बजाय ट्रीटमेंट करना चाहिए, इलाज करना चाहिए। दूसरा ये है, और जख्म को छीले मत, क्योंकि फिर वो कभी ठीक नहीं होगा। तो अगर जो भी मेरी और आपकी, जैसे मैं और आप कहते हैं मेरी ससुराल ने ये किया, मेरे शोहर ने ये किया, मेरी दोस्त ने ये किया, बाज़ुकात हम वहीं पे खड़े रहते हैं, मूव नहीं करते। तो पास जो है उसको छोड़कर गाड़ी चलाते हुए आप फ्रंट देख रहे होते हैं, आप बैक शीशे को बार बार नहीं देखते। तो याद रखें, ड्राइविंग में आगे देखना है, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना है, पिछली चीजों को छोड़ देना है। किसी की भी दो भी हमारे दिलों में ग्रजिज हैं, मसाइल हैं, फॉरगिव कर देना है, क्योंकि जब तक फॉरगिव करके दिलों को साफ नहीं करेंगे हम मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते, हमारे ताल्लुकात चीजें जो हैं वो ठीक नहीं हो सकती। और एंगर मैनेजमेंट करनी है। तो आखिरी बात और अहम बात कि खुशियां और पीस कैसे मिल सकता है, नंबर एक, इन्ना माल उसरे यूसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर रात के बाद दिन निकलता है। और इस सिलसिले में जो है वो मुझे और आपको, जो भी मेरी और आपकी मुश्किलात है ना या मसाइल हैं, उनको मुझे और आपको एक्नॉलेज तो करना है, फोकस नहीं करना। हम जिस महफिल में अब मैं बैठूं, अब मैं हर वक्त अपने बेटे का ही जिक्र करती रहूं या मैं हर वक्त उसी को याद करके रोती रहूं, हाँ मैं एक आजमाइश से गुजर रही हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुशियां भी बहुत हैं, अल्लाह की दीवी नेमतें भी बहुत हैं, मेरा बेटी है, मेरा बेटा है, और दुनिया की जिंदगी, अल्लाह ने तो बहुत पहले बता दिया था कि मौत को भी पैदा किया और जिंदगी को भी पैदा किया, लेकिन उससे खेलते खेलते मैं भूल गई कि मौत एकदम ऐसे भी आ सकती है ना। तो पहली इसमें फिर चीज़ क्या है, मसाइल और मुश्किलात को एक्नॉलेज करना है, फोकस नहीं करना। दूसरी चीज़ जो है ये अल्लाह की मैयत का एहसास रखना है कि अल्लाह मेरे और आपके साथ है। जब वो समंदर जो था, पीछे फिरौन था, आगे समंदर था, दो आजमाइशें थी ना, तो उसमें मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने क्या कहा, इन्ना लमुद्रकून, बस हम पकड़े गए, फिरौन अब तो हमें पकड़ लेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, कल्ला इन्ना माया रब्बी सयहदीन, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है और वो हमारी रहनुमाई करेगा। तो सुपर ताकत पीछे थी, लेकिन उसका अल्लाह पर भरोसा जो था वो कितना मजबूत भरोसा था कि उन्होंने ये कहा। तो सूरत तौबा की आखिरी आयत हर वक्त पढ़े, जो लोग भी डिप्रेशन में हैं, मसाइल में हैं, परेशानी में हैं, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लाहू अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। और फिर इसमें एक अहम चीज़ है, शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी बहुत अहम है। जितना ज्यादा इंसान शुक्रगुजार होता है, ग्रेटफुल होता है, अल्लाह उतना नवाजता चला जाता है। और आखिरी बात, बी पॉजिटिव, मुझे और आपको अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करना है, बच्चों के साथ, अपने शोहर के साथ, अपने दोस्तों के साथ। हम नेगेटिव बहुत हैं, वो बच्चों के बारे में ये बहुत बुरे हो गए हैं, शोहर के बारे में, दोस्तों के बारे में, ससुराल के, अच्छी चीज़ों को जो है ना मुझे और आपको फोकस करना है, ताकि मेरे और आपके दिन जो हैं वो बदल जाएं। तो की ऑफ हैप्पीनेस जो है वो क्या है, कि मैं और आप ईमान की हिफाजत करें, अल्लाह से अपना कनेक्शन बनाएं और अल्लाह पर तवक्कुल और एतमाद करें और अपने अंदर ग्रेटफुल और शुक्रगुजारी की कैफियत पैदा करें। और जिस जगह खड़े हैं ना, खड़े मत रहें, हर वक्त बैठकर रोने धोने, डिप्रेशन की गोलियां, नींद की खोलियां खाने की बजाय आगे बढ़ें। अब बच्चों के लिए, बच्चे नहीं मिल रहे या बुरी सोबत में हैं या शौहर सुन नहीं रहा या जॉब अच्छी नहीं मिल रही है, जो भी मसाइल हैं, तो कंटिन्यूसली स्ट्रगल करते जाएं, दुआएं मांगते रहें, अल्लाह ज़रूर हालात जो है वो बदलता है। अल्लाह पर ऐसा यकीन कि पहाड़ों से ज़्यादा हमारा यकीन मजबूत होना चाहिए, हमारा अल्लाह पर ऐसा तवक्कुल होना चाहिए जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को था, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम को था, जैसा कि असहाबे कहफ को था, जैसा कि ईमान लाने वालों को होता है। तो डिप्रेशन का ये सब चीज़ें क्या हैं, इलाज है, और अच्छे अमल करना से खुशी मिलती है, याद रखें। किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी को अच्छे अच्छे किसी के आंसू पहुँच दें, किसी की तीमारदारी कर लें, किसी यतीम के सर पर हाथ धर लें, किसी की कुछ नहीं कर सकते तो उसकी बातें ही सुन लें, तो जब बातें सुनकर उसको एक अच्छा मशवरा देंगे तो आप फील करेंगे कि आपके अंदर एक खुशी का एहसास जो है वो पैदा हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको हुस्ने अमल की तौफीक अता करे और मैं और आप जो है वो नेकियों में आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं बशरिल लज़ीन आमनु अन्ना लहुम क़दम सिदक़िन इंदा रब्बिहिम, और ईमान लाने वालों को खुशखबरी दे दीजिए कि उनके लिए उनके रब के नज़दीक जो है बड़ी इज्जत का मकाम है। तो खुशियाँ, इज्जत, सुकून जो है वो अल्लाह से कनेक्शन जोड़ कर मिलता है, दुनिया की दौलत और दुनिया की डिग्रियां और अच्छे घर और बड़ी बड़ी गाड़ियां मुझे और आपको सुकून नहीं दे सकती। सोहबत सवाले बहुत ज़रूरी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते रहे कि अलहिकनी बिस्सवालिहीन, आखिरी वक्त में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बढ़कर कौन आजमाइशों में से गुजरेगा, सगे भाई हासिद से, सगे भाई जेलिसी करते थे और सगे भाइयों ने कुएं के अंदर डाल दिया, और फिर जो है जिस जगह यानी बहुत आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से, और आप देखें कि ग़ुलाम बनाकर बेचे गए, क्या हैसियत थी उनकी, कुछ भी हैसियत नहीं थी, हालांकि आधा हुसन दुनिया के पास और आधा यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, कितने इम्तहान थे उनके। जिस घर में गए उस औरत ने जो है खुद बुराई की दावत दी और इन पर इल्ज़ाम लगाकर जेल में डाल दिया, है ना, पहले कुएं में गयाबतुल जुब, वो भी अंधा कुआं, फिर उसके बाद जो है इल्ज़ाम लगाकर, और सबसे बढ़कर किसी की इज्जत होती है, और इल्ज़ाम लगाकर जेल में डाल दिया, और उसके बाद मिस्र के तख्त पर अल्लाह ने उनको पहुंचाया। कितनी आजमाइशों से गुजरे, लेकिन जब उनके भाई उनके सामने आए तो ये नहीं उनको कहा कि वही तो हो जिन्होंने गयाबतुल जुब में डाला था, तुम वही तो हो जो हसद करते थे, वही तो हो ये, बल्कि उनको माफ़ कर दिया। तो आइए दिलों को साफ करें, दूसरों को माफ़ करें, रास्ता बनाएं और सब्ज़ा बिछाएं ताकि मेरे और आपके दिन जो है बदलते चले जाएं। फिक्र ये थी कि शबे हिजर कटेगी क्यों कर, फिक्र ये थी कि शबे हिजर कटेगी क्यों कर, लुत्फ ये है कि हमें याद न आया कोई, ज्यूं तो यूं कि ज़िंदगी को रश्क आए, ज्यूं तो यूं कि ज़िंदगी को रश्क आए, मरूँ तो मौत कहे कौन मर गया यारो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता करें। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اور رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللہ رب العزت آپ سب کو بہت جزا دے اور ہم سب کا آنا قبول کرے اور اس گھر پر اپنی رحمت برکت نازل کرے جس گھر نے قرآن کی محفل کا اہتمام کیا اہل خانہ کی ہر نیک اور جائز خواہش کو قبول کرے بیماروں کو شفا عطا کرے اور جو فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت کر دے کچھ بہنوں نے خاص طور پر مرنے والوں کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی درخواست کی ہے تو ان کے لیے بھی خاص طور پر جو ہے ایک کی بہن ہیں ایک کی ساس ہیں اور اسی طرح ہمارے بھی جو پیارے دنیا سے چلے گئے اللہ ان سب کی مغفرت کر دے گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹے ہیں اللہ ان کو اچھے رشتے دے دے اور بچوں کو نیک کر دے لائق کر دے ہمیں ہمارے بچوں کو صحبتیں سوالے عطا کرے اور ہماری بیماریاں ہماری تکلیفیں ہمارے دکھ جو دنیا کو نہیں پتہ لیکن اللہ کو پتہ ہے اللہ غیب سے ان کو جو ہے نا وہ ٹھیک کر دے ہمارے مسائل کو حل کر دے جن کی بیٹیاں ان سے الگ ہیں بیٹے ان سے الگ ہیں یا بچوں سے والدین الگ ہیں اور وہ پریشان ہیں ان کو منا رہے ہیں اور وہ روٹھے ہوئے ہیں
تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کر دے، اپنی غیب سے کچھ ایسا انتظام کر دے کہ بچے والدین آپس میں مل لیں، امیگریشن کے جن کے مسائل ہیں اللہ ان کو حل کر دیں، رزق کے مسائل کو حل کر دے، تو ہم سب کی نیک اور جائز خواہشات کو قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔